sorry, sorry. Nak sebentar, nak nak. Terakhirlah. Kali ini siapa? Ada dia, ada dah. Hari, hari, hari bawa. Hari, hari, hari bawa. Hari, hari, hari. Ini bola lagi kan? हरी 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 हम आज वन में पहुंचे हैं या अरण्य में पहुंचे हैं। एक समय यहां दंडकारण्य था, दंडकारण्य, उसमें से कुछ अरण्य अभी बचा है। इस अरण्य में जब राम आए वनवास, राम वनवास, तो उस समय अयोध्यावासी बहुत व्याकुल हुए। और उन्होंने अपने भाव इन शब्दों में व्यक्त किए। ये मराठी में है ये गीत। हरि बोल, हेलो गौरा, हरि बोल, हरि 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 बोल। आपने शायद सुना होगा, ये संत एकनाथ की रचना है। कसा मला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला कसा मला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम। कसा मला राम बिना जीव व्याकुल हो तो,
जीव व्याकुल हो तो,
राम बिना जीव व्याकुल हो तो,
राम बिना जीव
सुचत नाही काम, सुचत सुचत नाही काम। टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला।
कसा मला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला। राम बिना मन चैन पड़े ना, राम बिना मज राम बिना मज चैन पड़े ना, नाही जीवासी आराम, नाही जीवासी नाही जीवासी आराम। टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला। मला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला। एक जनार्दनी पाहुनी डोळा, एक जनार्दनी पाहुनी एक जनार्दनी पाहुनी डोळा, एक जनार्दनी स्वरूप तुझे घनश्याम, स्वरूप तुझे घन स्वरूप तुझे घनश्याम, स्वरूप तुझे टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला। राम बिना जीवा व्याकुल हो तो, राम बिना जीवा व्याकुल हो तो, सुचत नाही काम, सुचत सुजत नाही काम। टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला। टाकुनी गेला राम, राम राम, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
आइए हरि हरि वो हरि वो
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानिन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. कल भी कहा था जो प्रातःकालीन सत्र में आए थे कि आप दूर से आए हो ऐसा कहा था. आज तो फिर और भी अधिक दूर से आ गया हो. जितने अधिक दूर आते हैं तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं. बहुत प्रयास किया आपने, कष्ट उठाया आपने और सारी एंगेजमेंट्स छोड़ छाड़ के, सारे भव बंधन तोड़ के, सारे उत्तरदायित्व छोड़ के आप यहां पधारे हो. आप सभी का स्वागत है. ऐसे आपका स्वागत है, आपका परिचय हुआ. आप कैसे आए हो, दूर से आए हो. कुछ बाल गोपाल भी पहुंचे हैं. बालक और बालिका है. भगवान को खोजने के लिए लोग वन में जाया करते थे. ध्रुव महाराज ने जब पूछा था अपनी मां से, सुनीति से, कहां मिलेंगे भगवान, उसने कहा वन में मिलते होंगे. इसलिए ऋषि मुनि तो वन में जाते हैं. ऐसे जब सुना ध्रुव महाराज ने तो ध्रुव महाराज दौड़ पड़े वन की ओर. किंतु सौभाग्य से वो दंडकारण्य नहीं, वो साक्षात वृंदावन ही मिला. वृंदावन पहुंच गए ध्रुव महाराज के. और जब कोई भगवान की खोज के लिए निकलता है तो भगवान यही चाहते हैं. भगवान तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कब निकलता है. लेकिन जब भी निकलता है भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं. अगर कोई जानता है तो जानने वाले कौन है, भगवान है. हमको बहुत हम बहुत कम जानते हैं, हम लोग बहुत कम जानते हैं, लगभग जानते हैं नहीं, या मानते हैं नहीं फिर भगवान को। तो जानने वाले भगवान, हमारे दुखों को जानने वाले भगवान, हमारे कष्टों को जानने वाले अगर कोई है तो भगवान। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, वो भी हुआ, हरे परमात्मने, जो मेरी शरण में आता है, प्रणत क्लेश प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कहते हैं इस प्रार्थना में कहा है, प्रणत क्लेश नाशाय, क्लेश का नाश करने वाले प्रणत, जो जब नमता है, नमस्कार करता है, जब झुकता है, मेरी ओर आता है, शरण में आता है, तो मैं क्या करता हूं, क्लेश नाशाय, उनके क्लेशों को मैं समाप्त करता हूं। हरि परमात्मने, ऐसे हरि है, ऐसे परमात्मा है, तो हम सभी पर भगवान की कुछ विशेष कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष का ही फल है कि हम यहां बैठे हैं, यहां आए हैं। आप जानते थे बस यहां कोई रिजॉर्ट तो जा रहे हैं, किंतु यह कोई पार्टी नहीं है, या पार्टी है तो फिर हरे कृष्ण पार्टी ही है। जानबूझ के आपने ऐसे पार्टी में, ऐसे स्थान पर आना पसंद किया है, ऐसी बुद्धि हम सभी को भगवान ने ही दी है। ददामि बुद्धि योगम एनमाम उपयान्ति, ऐसी बुद्धि भगवान देते हैं। तो यहां पर लाने के पीछे जो विचार विमर्श या बुद्धि ही भगवान की है, भगवान की कृपा से हम यहां तक पहुंचे हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान को चाहते थे, कहां मिलेंगे भगवान, वन में मिलते हैं भगवान, जैसे नागपुर भी आजकल के शहर भी क्या है, वन है, जंगल है, कंक्रीट, कंक्रीट के क्या है, कंक्रीट के जंगल है, वो कंक्रीट के जंगल है, तो जंगल में मिलते हैं, वन में मिलते हैं, वहां मिल सकते हैं, लेकिन केवल वन नहीं दिलाएगा हमें भगवान को, वन में। तो ध्रुव महाराज जब पहुंचे वन में, वो वृंदावन था, तो भगवान ने उनके पास पहुंचा दिया, स्वयं नहीं पहुंचे, भगवान वही थे, वृंदावन के तो रहने वाले हैं भगवान, लेकिन स्वयं नहीं मिले। स्वयं मिलने के पहले ध्रुव महाराज का मिलन कराया, किनके साथ, नारद मुनि के साथ, और फिर नारद मुनि सारे विधि विधान कहे, ए ध्रुव तुम ऐसा करो, हाँ लेकिन ऐसा नहीं करना, मतलब कुछ विधि सुनाई और कुछ निषेध की बातें भी कही। उसके पहले थोड़ी परीक्षा भी ले ली, क्या सचमुच कितना चाहता है भगवान को, तो कुछ डराया भी, ए तुम तो बालक हो, या कई सारे डरावने पशु है, कोई बाघ शेर हो सकता है, यहां हो तोड़ो, गो बैक। तो ध्रुव महाराज जाने वालों में से नहीं थे, वे रह गए, निश्चय था उनका, नो मैं नहीं लौटूंगा, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो उद्देश्य सफल करके ही रहूंगा। आप कोई सहायता कर सकते हो तो कृपया मदद कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। तो वह नारद मुनि मार्गदर्शन किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। लेकिन हम नहीं कर सकते उस मंत्र का जप, क्योंकि वो जमाना, वो नियम तो उस युग के लिए उचित था, अब ये कलयुग है तो नया मंत्र है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, तो नारद मुनि के आदेश अनुसार उस अनुकूल क्षेत्र में, प्रदेश में, वन में, वृंदावन में उन्होंने अपनी साधना की, सारे यम नियमों का, यम का भी और नियम का भी पालन किया, यम का और नियम का, यम नियम अष्टांग जो अंग है उसके दो अंग है, यम और नियम, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के पहले, समाधि में ही तो भगवान का समाधिस्थस्य केशव, समाधि में स्थित जब होते हैं तो वहां प्रभु का दर्शन है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, दर्शन करते हैं संत महात्मा समाधिस्थ होते हैं, तो वो तो अंतिम अंग है, अंतिम सोपान है। लेकिन वहां पहुंचने के पहले की जो प्रारंभिक बातें हैं, नींव है, फाउंडेशन है, पाया है, पाया है, मराठी में कहते पाया, तो उल्टा नहीं होना चाहिए, आधी कलश मग, आप नहीं जानते, आधी कलश मग पाया रे, आधी कलश मग पाया। तो लोग कई बार तो यम नियम के पहले समाधि के ही बात करते हैं, पहले समाधि ध्यान करना चाहते ध्यान, लेकिन यम नियमों का ये फाउंडेशन, ये नींव है, यही से मार्ग प्रारंभ होता है, भक्ति का मार्ग। तो आज का जो हमारा यह हरे कृष्ण पार्टी है, मामला गंभीर है, तो हम या आप में से कुछ गंभीर व्यक्ति हो और नागपुर शहर में आपकी कक्षाएं चलती है, उनका नाम VTA क्या, वैष्णव ट्रेनिंग अकेडमी, वैष्णव ट्रेनिंग अकेडमी के स्टूडेंट कौन कौन है, हाथ जिनके हाथ ऊपर, वो तो पीछे आपके पीछे है अधिकतर, वो VTA के स्टूडेंट्स कुर्सियों में स्थान उन्होंने ग्रहण किए हैं। तो ये स्टूडेंट्स न जाने कब से अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग आध्यात्मिक विषयों का, तो उनका विषय, जिस विषय का, जिस शास्त्र का अब वे अध्ययन कर रहे हैं, उसका नाम है, देख सकते हो, उपदेशामृत। इस ग्रंथ का वो स्टडी कर रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक है, सिलेबस है, और अध्ययन हो रहा है, किंतु आज के दिन तो हुआ, आप सभी VTA के स्टूडेंट बन गए, वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी के सदस्य या विद्यार्थी आपको बनाया गया है, और इन VTO के स्टूडेंट्स ने इस उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद, आप नाम सुने होंगे रूप गोस्वामी की, शिल रूप गोस्वामी हमारे महान आचार्य रहे, जैसे नारद मुनि आचार्य, तो ये रूप गोस्वामी आचार्य, नारद पंचरत्र, नारद पांचरात्र या नारद भक्ति सूत्र, नारद जी के जैसे कई सारे ग्रंथ है, तो रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे, उन्होंने भी कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, नाम सुना है, भक्ति रसामृत सिंधु नामक भक्ति का शास्त्र सिखाए हैं, तो कई ग्रंथों की रचना उन्होंने की, उसमें से एक ये ग्रंथ है उपदेशामृत। ग्रंथों आकार से छोटा है, लेकिन मोटे विचार है, भव्य और दिव्य भाव है, कुल 11 ही श्लोक है इस ग्रंथ में, और VTA के स्टूडेंट्स पहले श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। इस श्लोक का अध्ययन किए हो, याद है विद्यार्थियों को, याद है ना, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो हुआ वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, उसका अनुवाद है रूप गोस्वामी का उपदेशामृत यहां प्रारंभ हो रहा है, वे लिख रहे हैं धीर व्यक्ति को, मैंने कहा गंभीर मामला या धीर या गंभीर व्यक्ति को, अपने वाणी के वेग को, वाणी का वेग, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन करना चाहिए, या वह कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद छह गुणों का जिक्र किए हैं इस श्लोक में, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। इसको थोड़ा संक्षिप्त में करते हैं, हमारा तो आज का होमवर्क तो इसके आगे का श्लोक है, इसके आगे के दो श्लोक आज हम यहां पढ़ने वाले हैं। हरि वाओ। तो वाचा, वाचा है वाणी, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। हरि वाओ। अच्छा, ओके, गुड, यस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वन में भी कंट्रोल है, कृष्ण करुणा प्रभु जी का। तो बीच में है जिह्वा। क्या है बीच में? जिह्वा। तो जिह्वा के तो यहां छह बातें कही है, तो मध्य में है जिह्वा। जिह्वा के दो कार्य होते हैं, एक है वाणी, कुछ कहना, और दूसरा है खाना। तो मध्य में जिह्वा है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। तो जिह्वा नियंत्रण में नहीं होने से मनसः क्रोध वेगम, तो जिह्वा के ऊपर है मन है। जिह्वा एक इंद्रिय है, इसके साथ जुड़ा हुआ मन है, और फिर मन में ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो जिह्वा जहां तक वाणी है उस पर नियंत्रण होने से फिर मन पर नियंत्रण नहीं रहता, और फिर मन क्रोधित होता है। तो बस तीन बातें हो गई, एक जिह्वा है, मन है, और फिर क्रोध है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। और पुनः जिह्वा मध्य में है। अब जिह्वा का कार्य है खाने का, उसके साथ ये खाने वाले जिह्वा के साथ और दो बातें जुड़ी हुई है। उदर उपस्थ वेगम। उदर जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, मतलब यह खाने पर कंट्रोल नहीं है, अधिक खा लिया, उदर जब भर जाता है तो उसी के साथ जुड़ा हुआ जो जनन इंद्रिय है। उदर मतलब पेट है, और उपस्थ मतलब जनन इंद्रिय है। तो भोजन पर नियंत्रण नहीं होने से फिर पेट फूलेगा, पेट भर देंगे हम, और जो पेट भरता है तो फिर कई सारी वासनाएं, इंद्रिय तृप्ति के विचार, जनन इंद्रिय सक्रिय होना या उनकी मांग बढ़ना, ये होता है। तो रूप गोस्वामी इस प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि नियंत्रण होना चाहिए, या जिसने नियंत्रण किया हुआ है अपने वाणी पर, अपने मन पर, अपने क्रोध पर, अपने खान पान पर, अपने पेट पर, और अपने जनन इंद्रियों के ऊपर, स पृथ्वीम से शिष्यात्, वह व्यक्ति सारे विश्व भर में शिष्य बना सकता है, जगत गुरु बन सकता है, वो आदर्श व्यक्तित्व है उसका, उसने जीत लिया है, जितेंद्रिय है वह। तो ये वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उतरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा। और जिसने जीत लिया है इन इन इंद्रियों को और इन छह अलग अलग वेगों को, वेग कहा है, ये हमको ढकेलते हैं वेग, अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद के पुशिंग्स, डोंट पुश मी अराउंड, डोंट पुश मी, मुझे मत ढकेलो, ए दूर रहो। लेकिन तौरों को तो कह सकते, ए डोंट पुश मी, लेकिन जब कहते ही है तब तक हमको कौन पुश करते रहता है, हमारी वाचा ढकेलती रहती है, हमारा क्रोध ढकेलता है गड्ढे में या अंदर से पुश होता है। तो इसको वाचो वेगम मनसः, मन का वेग, क्रोध वेगम, और क्रोध जब आता है तो क्रोध ऐसा ढकेलता है, ऐसा कुछ कार्यकलाप हमसे करवाता है। तो औरों को तो हम कहते हैं पुश मी, डोंट पुश मी, मुझे मत ढकेलो, मुझे मत धक्का दो, किंतु वैसे धक्का तो हमको अंदर से ही मिलता रहता है। जब जिह्वा ही, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, तो जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होने से फिर मन पर नियंत्रण नहीं होगा और फिर क्रोध पर नियंत्रण नहीं होगा। और जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है खान पान, तो फिर उदर पेट पर नियंत्रण नहीं होगा और फिर जनन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। किंतु होना चाहिए, और जिनका है वे तो उनका गौरव संस्तुति इस श्लोक में रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद किए हैं। तो ये बात हुई पहले श्लोक की संक्षिप्त में बात, ऐसे कई पन्नों का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखे हैं। मैंने 17 पृष्ठ लिखे हैं श्रील प्रभुपाद, छोटा छोटा ग्रंथ है, तो 17 पृष्ठों में इस श्लोक को समझाए हैं। हम तो 17 मिनटों में भी, 17 मिनट भी हमने नहीं दिए, तो हुआ तो श्लोक को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य महत्वपूर्ण है। तो हमको केवल श्लोक ही नहीं पढ़ना चाहिए, यथासंभव उसका शब्दार्थ भी पढ़ना चाहिए, उसका भाषांतर समझना चाहिए और फिर भावार्थ समझना चाहिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों की रचना किए हैं, फिर गीता है या फिर भागवत है या चैतन्य चरितामृत है या ईशोपनिषद है या उपदेशामृत है, इन सारे ग्रंथों में मूल श्लोक है, शब्दार्थ है, भाषांतर है और भावार्थ है। तो आप इस भावार्थ को भी पढ़िएगा, प्रथम श्लोक के भावार्थ को, तात्पर्य को। अब हम श्लोक संख्या 2 और फिर कुछ समय के उपरांत श्लोक संख्या 3 को भी पढ़ेंगे। और ये उपदेश अमृत है, क्या ये जब कथा होती तो अमृत, तो हाँ ये तो अमृत है ये, लेकिन थोड़ा ये डोज थोड़े कठिन हो सकते हैं हजम करने के लिए, या अधिकतर हम लीला कथा तो सुनना चाहते हैं, उपदेश आपको ये करना है तो फिर हम लोग कुछ करना नहीं, बस बैठे बैठे क्या करना है सुनना है, तो फिर नो प्रॉब्लम हम लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपकी ओर उंगली, ऐ तुम जो देश ऐसा मत करो, ऐ ऐसा करो, फिर हमारे लिए फिर कुछ होमवर्क मिलता है तो कभी कभी लगता है ये तो बहुत रूखी सूखी बातें हैं, शुष्क है, अमृत कहा है, लेकिन दवा भी पहले कैसी होती है, लेकिन बाद में थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, इसका जो परिणाम है, जब रोग से मुक्त हो गए तो दवा तो कोई ज्यादातर कड़ुई होती है, बिटर मेडिसिन, किंतु उसका जो परिणाम है अमृत। अमृत मतलब क्या, उपदेशामृत मतलब अमृत, इससे कुछ पता चलता है, अमृत मरेंगे नहीं, इसका पान करने से फिर पुनः मरेंगे नहीं, आप अमर अमर बनोगे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, हमारे देश में चलता अमर रहे, संजय गांधी अमर रहे चलता रहे। तो जब तक क्या है चांद सितारे, तब तक जब तक सूरज चांद सितारे अमर रहे। तो मार्ग पता नहीं होता, इच्छा तो ठीक है अमर बनने की, लेकिन मार्ग ये है, अमर बनना है तो उपदेश अमृत का पान करना होगा। तो समुद्र मंथन किया उन देवताओं ने, दानवों ने भी, और पान किया अमृत का, अमर बनना चाहते थे, उससे भी अधिक श्रेष्ठ अमृत है ये उपदेश अमृत। तो हुआ तो दूसरा श्लोक आपके समक्ष है, तो पीछे कह भी सकते हो, हाँ कहोगे, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। आप में से कोई लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति, माताओं में से कोई इस श्लोक का अंतिम दो शब्द है भक्ति विनश्यति, भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश होगा। किसे भक्ति का विनाश होगा, षड भी ही, षट छे और षड भी ही, इनके द्वारा, इन छह बातों के द्वारा भक्ति का विनाश संभव है, भक्ति विनश्यति। सावधान, तो वो छह आइटम, छह बातें जिसे विनाश हो सकता है भक्ति का, कोई चाहेगा विनाश, विनाश तो कोई नहीं चाहता, किंतु सावधान नहीं होने से, सावधानी नहीं बरतेंगे हम तो वह हम नहीं चाहने से भी विनाश तो अपने नियमों के अनुसार विनाश तो होगा। तो अगर हम नहीं चाहते हैं विनाश तो इन बातों को समझना होगा। जिन बातों का पहले श्लोक में कही हुई बातों से संबंध है, वह पॉजिटिव कहा था या थोड़ा निगेटिव कहा जा रहा है, वह सकारात्मक या नकारात्मक। तो अत्याहार की बात है। अत्याहार कौन कौन सी छह बातें हैं? अत्याहार, अत्याहार मतलब अति आहार, अत्याहार, अति जमा आहार, अत्याहार एक हुआ। दूसरा है प्रयासस्य, प्रयास, प्रयास करने से क्या हो सकता है? वही तो कहा जा रहा है विनाश होगा। अत्याहार से विनाश होगा ये तो थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रयास से विनाश होगा मतलब कुछ गलत प्रयासों से। प्रयास तो होना चाहिए लेकिन प्रयास सही नहीं है तो उसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। तो प्रयास से विनाश होगा, फिर प्रजल्प से विनाश होगा। प्रजल्प, प्रजल्प कुछ बातें जिनका भगवान से ग्राम कथा, शास्त्रों में अच्छा शब्द का ग्राम कथा। ग्राम कथा को क्या कहा है? एक राम कथा और दूसरी ग्राम कथा। राम कथा का तो स्वागत है और ग्राम कथा प्रजल्प हुआ तो ग्राम कथा से विनाश होगा। नियमाग्रह, नियम तो वह अनिवार्य है लेकिन उसके साथ आग्रह जुड़ा हुआ है। अग्रह या आग्रह दोनों भी जुड़े हुए हैं तो नियमाग्रह से या नियम अग्रह से या आग्रह से भक्ति का विनाश संभव है। जनसंगश्च, जनसंग जनता के साथ संपर्क, जनता एक जनता पार्टी भी है और कोई जनता ट्रेन भी चलती है, जनता एक्सप्रेस तो हुआ। जनसंगश्च, जनसंपर्क से कुछ ऐसे जन है, जन जनों में जन जन ऐसे कुछ जन है जिनके संपर्क से क्या होगा? भक्ति का विनाश हो सकता है। और लौल्यश्च, कुछ लोलुपता है, कुछ लोभ है, लोभी वृत्ति है हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है। ये मोटे मोटे आपको बस केवल छह ही बातों से विनाश होता है, हम तो 600 कह सकते हैं और भी कई सारी बातें। तो यहां पर ये मुख्य मुख्य छह बातों का जिक्र हुआ है। और भी आपने अगर कोई बातें सोची है तो उसका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन छह बातों से होना चाहिए। तो हुआ, तो पीछे का जो श्लोक था उसमें क्या था? पहले श्लोक में हमने कहा था जिह्वा बीच में है, जिह्वा से जुड़े हैं मन और क्रोध, और जिह्वा से खाने के दृष्टि से देखा जाए तो उदर और उपस्थ से संबंध। तो यहां कुछ आप देख रहे हो जिह्वा का संबंध इस श्लोक में, जिह्वा का संबंध हो ऐसे कोई इच्छोभ छह बातें कही है, उसमें जिह्वा से किसका किसका संबंध है? आहार और प्रजव। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। छड़ी का ना, आप अच्छे स्टूडेंट हो, छड़ी की जरूरत नहीं। वाह। तो जिह्वा का संबंध आहार से और जल्प प्रजल्प से है। तो वाचो वेगम, जिह्वा वेगम कहा है? वाचो वेगम, जिह्वा वेगम पहले श्लोक में था। वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, दो वेग थे पहले श्लोक में। छह वेग है, छह बातें जो हमको ढकेल देती है गड्ढे में या माया में या गलत गुमराह करती है, पथ भ्रष्ट करने वाली छह बातें। तो हुआ वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, उसका भी इस श्लोक में संबंध है। अत्या आहार और प्रजल्प। दूसरे स्थान पर कहा है वैसे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत या शुभारंभ जिह्वा से संभव है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः। श्री कृष्ण को हम जानना चाहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला को समझना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी जो बद्ध अवस्था में जो कलुषित और अनियंत्रित असंयमित जो इंद्रिया है वो संभव नहीं होने देंगी भगवान के नाम रूप गुण लीला का साक्षात्कार या अनुभव। किंतु हम क्या करेंगे, जिह्वा से शुरुआत करेंगे। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? जिह्वा से होती है। तो जिह्वा के दो कार्य है, एक खाने का कार्य है, दूसरा बोलने का कार्य है। अत्याहार, अति आहार, अतिहार से हमारे भक्ति का विनाश हो सकता है। अधिक खाने से होता क्या है? अधिक खाने से, अति आहार, अधिक खाने से क्या क्या होता है? एक तो उल्टी होगी, डायरिया भी हो सकता है, मतलब कुछ शरीर में बिगाड़ आ गया, हम बीमार हो सकते हैं। अधिक खाने से लोग जितने बीमार और मर भी जाते हैं, उतने लोग भूखे रहने से नहीं मरते हैं। आपको पता नहीं होगा, श्रीमान लोग तो सोचा उनकी मदद करो, उनकी मदद करो, देखो भूखे हैं, नंगे हैं, भूख अकाल है, भूख से मर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि अधिक खाने वाले अमीर लोग भी यही अधिक संख्या में मरते, अधिक खा के। कम खाने वाले कम मरते या देरी से मरेंगे, लेकिन ये पहले मरते हैं। तो अत्याहार और अति आहार से होगा क्या फिर? और क्या होता है जब खाएंगे? तो आज तो आपका उपवास है, इसलिए आप सोते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। हर रोज सारी कक्षाएं वैसे प्रसाद के पहले करनी चाहिए। तो अति आहार से क्या होता है? नींद आती है। फिर कैसे भक्ति होगी? भक्ति का विनाश होगा कि नहीं? ये तो भक्ति योग है, उसी के बीच में निद्रा योग शुरू हुआ। जो अतिहार का दुष्परिणाम है, तो भक्ति से हम हट गए। अतिहार से और क्या क्या होता है, एक ने अधिक खाया, आप अधिक खा रहे हो, मतलब और कोई व्यक्ति कम खाएगा तो आपको आपको दया नहीं है, आप में सचमुच दया होती औरों के प्रति भी तो आप क्या करते, आप कम खाते। तो वह अत्याहार, तो वैसे कहा है हमें हमारा जो पेट है आधा भरना चाहिए प्रसाद से, अन्न से, और फिर कुछ हवा हवा और पानी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। कभी कभी हम कहां तक, यहां तक प्रसाद से भर देते हैं, आ कर दिया तो वहां दिखाई देगा, देखो आ, नो स्पेस फॉर। तो हुआ अत्याहार, तो अत्याहार उचित नहीं है। जब हम अत्याहार यहां कह रहे हैं तो कोई कहेगा कि ओ मैं अत्याहार तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं अंडे का आहार करता हूं, बाकी लोग तो कई सारे अंडे खाते, मैं थोड़ा ही एक ही अंडा खाता हूं। वो अल्पाहार भी है, उसने स्वल्पाहार ही किया, वो भी विपरीत बात हो गई। तो यहां आहार मतलब एक तो सात्विक आहार की बात चल रही है ना, तो और भी कई टॉपिक निकल आएंगे, वो हम सारी चर्चा तो संभव नहीं है। और जब हम आहार कहते हैं यहां, एक तो भोजन भी है और धन भी है या संपत्ति भी है या और भी जो कुछ हम लोग साधन सामग्री जुटाते हैं, असंग्रह, ब्रह्मचर्य, उसके पहले क्या है, महात्मा गांधी कहा करते थे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह असंग्रह कम संग्रह। पेट में तो खाना वो भी एक अत्याहार हुआ, लेकिन आपका घर भरा हुआ है कितने सारे वस्तुओं से, वो भी वो संग्रह, और उसके लिए फिर आपने बहुत धन जुटाया आवश्यकता से अधिक, तो वो भी अत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो यह केवल भोजन से लिमिटेड नहीं है। वैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं आहार केवल जिह्वा का ही नहीं होता है, आहार तो आंखों का भी होता है, आहार तो कानों का भी होता है, भिन्न प्रकार का, नाक का भी है और त्वचा का भी है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इंद्रियों के विषय है। तो अत्याहार मतलब केवल हम अत्याहार तो नहीं करेंगे, जिह्वा से तो कम खाएंगे, लेकिन आंखों से देखने की चीज है तो बार बार और क्या हजार बार देख, नहीं वहां भी अत्याहार का नियम है, अत्याहार। और वहां पर भी वैसे यह आंखों का आहार क्या है, दृष्टि का आहार क्या है, रूप है, रूप। वैसे आंखों का आहार तो भगवान का दर्शन ही है। पापा जी वासना नको दाऊ डोला याहुनी आंधळा बरासमी। तुकाराम महाराज ने कहा, हे प्रभु, मैं अगर मेरी आंखों से कुछ पाप देखने जा रहा हूं, देखने वाला हूं, तो अच्छा है कि मुझे क्या करना, मुझे अंधा ही बना दो। आंधळा बरासमी, यह हम कहते हैं, बातें तो फिर कई सारी है। आप ऑपरेशन कर रहे हो, किसी का ऑपरेशन कैंप चल रहा है, तो अभी तो अंधा है या कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही आप दृष्टि उसको दोगे तो क्या करेगा, वो दूरदर्शन देखेगा, हेमा मालिनी का दर्शन या अमिताभ, इन्हें जो भी हमारे जमाने के वो अभी बताने और कौन कौन आए हैं, तो ये तो बेकार हो गया। तो अत्याहार भी नहीं और स्वल्प अल्पाहार भी नहीं। वैसे तो यह अत्याहार तो आहार को, आहार तो उचित होना चाहिए। तो आंखों का आहार है, कानों के लिए आहार क्या है, श्रवण है, सुनना है। तो बेस्ट आहार क्या है, कानों के लिए बेस्ट आहार क्या है, परिणाम। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। मराचार्य कर, जिसके कानों में, जिसने अपने कानों से आहार किया, कानों के लिए फीस्ट, उसने अमृत पान किया, गौरांग महाप्रभु के मधुर लीलाओं का श्रवण किया, तो निर्मल होगा उसका हृदय। जहां तक आंखों का पान की बात है, जो आहार है आंखों का, जब कृष्ण बलराम कौंडिन्यपुर में आए थे रुक्मिणी हरण के समय की बात है, तो वहां वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सारे विदर्भ के वासी, विदर्भ वासी वहां पहुंच गए और कृष्ण बलराम के सौंदर्य का वो पान कर रहे थे। तो वहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो आंखों के प्याले बनाए, विदर्भ वासियों ने क्या किया, आंखों का प्याला बनाया। आंखों का प्याला समझते हैं ना, आंख थोड़ी अंदर अंदर है, मेरा प्याला तो और बड़ा है थोड़ा, थोड़ा अमृत पान अधिक अधिक पान हो सकता है। तो वो ये जो है, ये है प्याला। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण बलराम के सौंदर्य का पान विदर्भवासी प्याले, अपने आंखों के प्याले भर भर के पी रहे थे और वो पीने से उनको नशा आ रही थी, मस्ती में आ गए, भगवान के सौंदर्य भाव उमड़ आए, कृष्ण बलराम के प्रति उनका भक्ति का उदय हुआ जब वो पान कर रहे थे, आहार कर रहे थे, आंखों का आहार। तो आंखों का आहार, फिर त्वचा का आहार, फिर कानों का आहार, नासिका के लिए आहार। चार कुमार थे, वे जब भगवान के दरबार में आए, वे पहले थोड़े ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी, निराकार, निर्गुणवादी थे चार कुमार। लेकिन विष्णु मंदिर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, प्रातः काल का समय, भगवान को अभी भी कई सारे सुगंधित फूल अर्पित किए थे और तुलसी की माला उनके चरणों में, गले में भी तुलसी हार गड़ा चल रहा है और चंदन चर्चित अर्पित भगवान का विग्रह। तो चार कुमार थे, छोटे छोटे बालकों ने प्रवेश किया और केवल सूंघ लिए, उसी के साथ उनका अद्वैतवाद समाप्त हो गया, उनका ब्रह्मवाद निराकारवाद, उनका भगवान के विग्रह में, रूप में, सौंदर्य में उनकी श्रद्धा निष्ठा जागृत हुई। केवल उन्होंने नाक से आहार किया, उन्होंने सूंघ लिया। तो यहां आहार की बात चल रही है और अत्याहार की बात चल रही है। तो उचित प्रकार का आहार हो, इंद्रियों का आहार है तो इंद्रियों के विषय भगवान को बनाना चाहिए। इंद्रियों का विषय भगवान, तो अत्याहार, फिर प्रजल्प, तो जिह्वा का दूसरा कार्य है प्रजल्प। प्रजल्प का कहां है? प्रजल्प, प्रजल्प दिखा दो, प्रजल्प का संसार देखो। तो ये आठ प्रकार के भक्ति विनाशक प्रजल्प, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनकी पीयूष वर्षिणी नामक ग्रंथ से ये आठ बातों से हमें सावधान कर रहे हैं। अनावश्यक चर्चा हरि के विषय में नहीं, कैसी चर्चा जो हरि के विषय में नहीं है वह सब अनावश्यक है। तर्क वितर्क करना, ईश्वर विहीन वाद विवाद कलह जो वेदों पर आधारित नहीं है, तो तर्क वितर्क तो कई है, लॉजिक, न्याय, लेकिन जिसकी मदद से भगवान के अस्तित्व की स्थापना नहीं होती, ऐसे भी कुछ वाद है। यावत जीवेत, क्या करो सुखम जीवेत, ऐसा वाद है। जब तक जीते हो क्या करो, सुख से जियो, और जीने के लिए क्या करो, घृतम पिबेत, घी पियो। ऐसे किसने कहा? चार्वाक मुनि ने कहा। लगता तो है ये तो संस्कृत भाषा में है, कोई कहे मस्त भी संस्कृत भाषा में है तो कोई सत्य होगा, कोई लाभदायक नहीं। ऐसी कई बातें हैं, संस्कृत भाषा की भी हो सकती है, तो वह उसे सावधान रहना चाहिए। उस पर अधिक चर्चा, वाद विवाद, अनर्थपूर्ण चर्चा, बकवास, बक 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 बक, उसे कौन करता है? मेढक क्या करता है? बक 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 करता है। और क्या करता है? फिर वो आमंत्रित करता है। किसको आमंत्रित करता है वो? सर मैं यहां हूं, आई एम हियर। बेचारा चुप मार के बैठता तो उसकी कुछ जान बच सकती थी, लेकिन उल्टे क्या करता है? आमंत्रण देता है, मैं यहां हूं, बक 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 बक, राउंड 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 राउंड। तो मेढक के लिए तो आ जाता है सर्प, और मनुष्यों के लिए आ जाती है मृत्यु, आ जाती है। बक बक का परिणाम या फल है मृत्यु। जब तक मनुष्य बकवास करता रहेगा, प्रजल करता रहेगा, तब तक उसका आना जाना भी संसार में इसीलिए क्या करो, एक तो चुप मारो, वहां से शुरुआत हो सकती है। जो ध्यान में बैठते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, मतलब जो कम से कम ध्यान के समय तो नॉनसेंस बात तो नहीं होती है, उसको शायद पता नहीं होगा ध्यान किसका करना है, और केवल बैठ के ध्यान करना ही, उससे भी और आगे सिद्धियां है। उठ के खड़े हो जाओ गोपियों जैसा, कुछ कार्य करो, नाचो गाओ खाओ या दौड़ो कृष्ण के लिए, कुछ सेवा करो भक्ति योग, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कोई ध्यान के लिए बैठता है तो कम से कम उस समय तो उसका जो बकवास है वो तो बंद रहेगा। वाद विवाद विजय होने के लिए कामना से तो वाद विवाद कई सारे या शास्त्रार्थ करते हैं। वो दिग्विजयी थे केशव काश्मीरी, सब जगह जाके शास्त्रार्थ करते थे, सभी को परास्त करते थे, अपने तर्क वितर्क का उपयोग करते हुए। तो तर्क वितर्क की मदद से वैसे नास्तिक भी उसका उपयोग करते हैं। दूसरों को दोषों को बताना, स्वयं की बुरी आदतों को दूसरों पर थोपना, ऐसा भी संभव है। उसने कहा वो सावधान नहीं होगा, एक चोर ने चोरी की और तो दूसरे दिन लोग इकट्ठे हो गए, तो वो भी चोर भी आ गया था वहां, वो सावधान नहीं हुआ, मैं कैसे निकला होगा, छोटा ऐसा तो स्थान है, नहीं ऐसा कुछ उसने कहा तो हुआ। तो झूठ बोलना, स्वयं के स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, एक कसाई पीछा कर रहा था गायों का, वो भी कहानी आती बात आती है। फिर उसने पूछा, तो गाय दौड़ रही थी, कसाई पीछे दौड़ रहा था, तो वह तो रास्ते में सद्गृहस्थ मिले ब्राह्मण, तो गाय थोड़ी कुछ आगे गई थी, थोड़ा पीछे रहा था कसाई, कुछ दूरी थी, तो जब वो पहुंचा उस व्यक्ति के पास, व्यक्ति ने तो तुमने गाय देखी, यस यस देखी, कहां गई, आगे बढ़ो, उसने देखा था तो गाय कहां गई थी, मुड़ी थी किसी गली में, लेकिन उन्हें झूठ बोला कि गाय आगे गई है, भाई आगे बढ़ो, तो झूठ तो बोला, लेकिन यहां ये झूठ तो गौ माता की सेवा में हुआ, तो हो सकता है कभी झूठ, लेकिन वो कृष्ण के लिए या गाय या गंगा या गीता के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए हो सकता है। कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स है, क्या कहा जाए, वे अगर कहेंगे कि हम मंदिर गए तो फिर उनके माँ बाप तो या कई माताओं को कभी औरों को भी कुछ थोड़ा बताना पड़ता है, हम यहां गए थे, हम वहां गए थे, गए तो थे मंदिर में, तो ये थोड़ा दूसरे प्रकार का झूठ है। नरो वा कुंजरो वा, ओ मां हम पता नहीं है वो हाथी था कि नर था, एक अश्वत्थामा की तो मृत्यु हो चुकी है, तो नरो वा कुंजरो वा, तो नरो वा कुंजरो वा, तो भगवान शंख बजा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा ऐसा ऐसा कहो ऐसा कहो, नरो वा कुंजरो वा कहो ना। नहीं झूठ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो कहो मुझे पता नहीं वो नर है कि कुंजर है हाथी है। तो वा नरो वा कुंजरो वो छिपाने के लिए, क्या छिपाने के लिए, वो कुंजर जो है हाथी तो ताकि समाचार क्या फैले सचमुच अश्वत्थामा मनुष्य नर ही उसकी हत्या हुई है। तो भगवान बीच में आके वो जब घोषणा हो रही थी अनाउंसमेंट, तो भगवान अपने शंख ध्वनि से उसको छिपा रहे थे ताकि सबको पता चले कि नरो हुआ, नर नर की हत्या हुई है, नरो हुआ कुंजर हुआ। anyway, तो हुआ तो झूठ स्वार्थ के लिए झूठ माया के, वैष्णव की निंदा करना सर्वाधिक घातक है, उसकी भी चर्चा, उसका भी प्रजल्प भयानक है। संसारी विषयी चर्चा भगवत भावना से जो विहीन है, ऐसे प्रजल्पों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो क्या होगा, भक्तिर विनश्यति, ये समझना, ये तो भक्ति का नाश होगा। तो जब हम बोलते हैं उसको नाप तोल के बोलना चाहिए, तराजू लेके हम नाप तोल के बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, कितना बोलना है, उसका विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो प्रज्वलित नहीं करेंगे मतलब बोलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं स्टिचिंग करेंगे। अब ऐसे भी लोग कुछ करते हैं या मौनी बन जाते हैं, मौनी तो ठीक है, जैसे वो ध्यान करने वाले कम से कम ध्यान के समय तो कुछ बदमाशी नहीं करते, तो मौन है तो कम से कम बोलेंगे नहीं, कुछ बकवास नहीं होगा। लेकिन वो परफेक्शन तो नहीं है, सिद्धि तो बोलने में है। इसलिए कहा कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम। ये ना कि बोलो नहीं, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। ये ना कि खाओ नहीं, लेकिन उसका शास्त्र है, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो अत्याहार और ये प्रजल्प प्रयासस्य, अति आहार के लिए क्या करना पड़ता है, फिर अधिक प्रयास भी करना पड़ता है, अधिक खाएंगे, अधिक सभी इंद्रियों के लिए। अभी तो आप समझ गए कि आहार मतलब केवल इंद्रिय का आहार नहीं है, और टेलीविजन भी आहार है। हम कभी कभी एक ही साथ आहार खिलाते हैं, जिह्वा का भी आहार चल रहा है, आंखों का भी आहार चल रहा है, और क्या क्या कानों का भी, यस वेरी गुड, कानों का भी आहार चल रहा है, हो सकता है त्वचा का भी आहार चलता होगा। विदेश में हम देखते हैं लोग जैसे चलते हैं साथ में, स्त्री पुरुष साथ में ही चलते हैं, तो कुछ उनका हाथ में कोई शराब की बोतल भी है, पी भी रहे हैं, कुछ टेलीविजन भी देख रहे हैं, साथ में और भी कोई है स्पर्श के लिए भी, तो साइमल्टेनियसली एक के बाद एक नहीं, एक ही साथ, फिर कितना विनाश और कितनी रफ्तार से विनाश होगा होता, कितने स्पीड से वे नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो द फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, ये किस लिए है, ये दूर संचार या जल्द हर हर स्पीड स्पीड डाली जा रही है, स्पीड पोस्ट भी है या स्पीड एवरीवेयर, संपर्क के साधन या ट्रांसपोर्टेशन, ताकि इंद्रियों के जो विषय है उनको इंद्रियों के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास आजकल हो रहे हैं। तो आहार को कम या सीमित कर दिया तो फिर प्रयास भी क्या होगा, सीमित हो जाएगा। जब तक अत्याहार को बढ़ाना ही है या जितना आहार चला और भी बढ़ाना है उसको, इंद्रियों का सभी इंद्रियों का आहार को बढ़ाना है तो फिर प्रयासों को बढ़ाना होगा। और प्रयासों को इतना बढ़ा देंगे जब स्टार की में कुछ सेमिनार वगैरह चल रहा है तो आपके पास, उस व्यक्ति के पास समय नहीं होगा, स्वामी जी नेक्स्ट टाइम आई एम बिजी, वेरी बिजी। Day and night, busy चल रहे। तो इसी तात्पर्य प्रभुपाद सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बातें किए हैं। तो सिंपल, कीप इट सिंपल, स्टूपिड। हम पाश्चात्य देश में गए थे, आई थिंक इट्स अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब हमारे देश में एक, हम कुछ लोग तो एक नया फॉर्मूला सोच रहे हैं। हमने पूछा वो कौन सा फॉर्मूला है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी किस फॉर्मूला है, क्या कहा, क्या किस किस, उन्होंने कहा हम स्वामी जी आई हैव नथिंग टू डू विथ किस, क्या फॉर्मूला। उन्होंने कहा कि KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने समझाया आगे उसका, हाँ लिख रहे हो, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो विदेशों में भी कुछ लोग इस निष्कर्ष तक पहुंचे, अभी हमें क्या करना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत क्लिष्ट हो गया जीवन, बहुत बिजी, हम रैट रेस चल रही है, चूहे की दौड़ चल रही है, क्योंकि बहुत डिमांड है हमारे इंद्रियों की, बहुत आहार, आंखों को, कान को, नाक को, और हमारा अकेले का थोड़ा ही है, हमारे परिवार है, समाज है, हमारा भारत देश है, सबके इंद्रिय दे आर ऑन फायर, सेंसेस आर ऑन फायर। प्रभुपाद कहते हैं सेंसेस में क्या लगी है, आग लगी है, तो सबको शांत कराना है तो क्या करते हैं हम, कुछ मिर्च मसाला जो भी उनका विषय है फेंक देते हैं, स्वाहा खा लो पी लो सूंघ लो स्वाहा, उसी के साथ क्या होता है, आग बुझ जाती है क्या, आग धधकती है, भड़कती है, फिर और खिलाना पड़ता है उसके लिए, बहुत रेस में उतरना पड़ता है, कंपटीशन और क्या क्या, फिर किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल स्टूपिड। ये उल्लू के पट्टे क्या करो, कीप इट सिंपल, थोड़ा सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ, सादा जीवन जीना भी सीखो, ऐसे जीवन की ओर मुड़ो, हे मूर्ख, कीप इट सिंपल ओ स्टूपिड। तो इससे बहुत कुछ, फिर वो ये सारा जुड़ा हुआ है, ये अत्याहार के लिए प्रयास, उस प्रयासों के अंतर्गत कई सारे प्रज्वल, कई सारा टॉक, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग। अब तो इतना लोग बात कर रहे हैं, डे एंड नाइट बात हो रही है। mobile and probably emails and this and that. बहुत बात हो रही है, मतलब मानो कोई सुनने के लिए तैयार, सुनने के लिए क्या सुनने तैयार, हर व्यक्ति बोलना चाह रहा, हर व्यक्ति व्यस्त है, हर एक अपने प्रयास है, क्योंकि हर एक ने अपना कुछ आहार बना लिया है, निश्चित किया है, खिलाना पिलाना पड़ता है इंद्रियों को। तो इनके स्थान पर ये संयम की बात अगर होती, इंद्रिय संयम। और इसी के साथ वैसे जनसंघस्य, जनसंघ भी चलता है, ये सब आइडियाज कहां से आती है, आहार की आइडिया, फिर उसी के उसके लिए आहार ये एक लक्ष्य है तो प्रयास उसका साधन है, समझ रहे ना, पहुंचना है आहार तक, हमारी इंद्रियों को ये खिलाना पिलाना है, तो उसके लिए जो प्रयास है, प्रयासों के अंतर्गत प्रजल्प है, बातें हैं, और ये सारी आइडिया वैसे जनसंघस्य, जनता के साथ संपर्क होने के कारण जनसंघस्य, जन वो जन वैष्णव जन ते हो तेने कहिए, वो जन नहीं, जन जन में अंतर है, ये जन है दुर्जन, दो प्रकार के जन, एक दुर्जन है तो फिर दूसरे होंगे सज्जन, सज्जन दुर्जन। तो भक्ति विनश्यति, भक्ति का नाश होगा जनसंघस्य, जनता के साथ जो भक्ति विहीन है। श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे कि जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, उनके साथ भी संपर्क नहीं करना चाहिए, केवल भक्ति योगियों के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान के साथ हमारा संपर्क कराएंगे। लक्ष्य तो भगवान है, रूप वाले भगवान, गुण वाले भगवान, नाम वाले भगवान, लेकिन जो निर्विशेष शून्यवादी जो है, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, ये वाद वो वाद, तो फिर पुनः हम घाटे में आएंगे। इसीलिए क्या करो, चैतन्य महाप्रभु से पूछा और भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, यहां पर कई तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही, आप क्या करो, दूर रहो, या वैष्णव की पहचान उन्होंने वहां वैसे कही, असत संग त्यागात यही वैष्णव आचार। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव का परिचय या वैष्णव चरित्र संबंध में ये बात कही, असत्संग त्यागात ये वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है, वो असत्संग को त्यागते हैं, झूठे संग को, मायावी संग को जो जनता से प्राप्त होता है, जनता मतलब वही तो अत्याहार करने वाली जनता, वो जनसंग, और कैसी जनता, प्रजल्प करने वाली जनता से दूर रहो, जनसंघस्य, ऐसे जनता का, और प्रयास करने वाली, आहार के लिए जो साधन जुटाने वाली जो जनता है, ऐसे जनता से क्या करो, दूर रहो, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो। जनसंघस्य, क्योंकि जनता के संपर्क में आएंगे तो फिर लौल्यश्च, लोलुपता, लोभ, कई सारी आइडियाज उनके साथ में रहने से, चर्चा करने से, लेटेस्ट मॉडल की बात होगी, फिर ये लेटेस्ट मॉडल, वो फ्रिज कई सारी भोग विलास की आइडियाज विचार स्थान हाँ वहां जाओ वही चर्चा का टॉपिक बनेगा प्रज्वलित होगा और फिर लोभ मतलब लोभ से फिर अत्याहार और अधिक आहार करने की बात होगी फिर इस प्रकार आप देख सकते हो कि कैसे ये अत्याहार का प्रयास का प्रजल्प का जनसंग का लौल्यम लोभ का संबंध कैसे घनिष्ठ संबंध है एक दूसरों के साथ तो लोभ का तो कोई वैसे अंत नहीं है महात्मा गांधी भी कहा करते थे जहां तक आपकी नीड है नीड आवश्यकता है उसको तो प्राप्त करो जीवन आवश्यक बातों को प्राप्त करने का तो आपको अधिकार है लेकिन नीड के वे कहा करते थे महात्मा गांधी नीड के स्थान पर जब ग्रीड आएगी पहले थी नीड लेकिन नीड के स्थान पर जब ग्रीड ग्रीडी हम होंगे जब को लोभी बनेंगे जीवन में फिर क्या होगा हाय हाय ये नहीं है हाय हार वो नहीं है हाय क्या हाय फाय आजकल का समाज कैसा कहते हाय फाय मैं तो समझा नहीं हूं अभी तक भी न तो समझने की आवश्यकता लेकिन कहते रहे हाय फाय आई डोंट नो व्हाट इज द हाय फाय आप शायद जानते होंगे आप गोंदिया वाले अच्छा ओ मॉडर्न चल रहे हैं आपके तो ये तो जो ग्रीड है नीड और जहां तक आपको क्या कहा जाए क्या आवश्यकता पता है भगवान गीता में कहे हैं अन्नाद भवंती भूतानि बस जीने के लिए क्या चाहिए अन्न चाहिए वैसे कई ऐसे भी लोग हैं जो वस्त्र के बिना वस्त्र का भी नाम जोड़ा जा सकता है लेकिन वस्त्र नहीं है तो जी तो सकता है कई दिगंबर पंथी भी है या कई नागा बाबाज भी है का और भी है अन्य योनियों में वस्त्र से टेलर्स वगैरह नहीं है तो बेसिक नीड भगवान ने कहा अन्नाद भवंती भूतानी भूतानी मतलब जी मनुष्य होंगे कब होंगे अन्नाद भवंती अन्न होगा तो मनुष्य होंगे तो बेसिक जो नीड है आवश्यकता है भगवान ने एक ही बात का जिक्र किया है वो है अन्न है तो जीवन कितना सरल हो सकता है कितना सरल हो सकता है हम कहां गए थे वो रामटेक ही जब गए थे हम कुछ वर्ष पूर्व तो वहां हमने ये बात कही थी हम विचार आए थे कि उस क्षेत्र में राम के समय वहां ऋषि मुनि रहा करते थे वैसे उनके पधारने के पहले तो कई राक्षसों ने उनका वध किया था ये बात दूसरी है दुर्भाग्यवश किंतु वहां रहते थे उस क्षेत्र में और वहां से कई गोंदिया या अमरावती या और कई आते जाते नहीं थे उनकी सारी जो आवश्यकताएं है वही पूरी हो जाती थी कंद मूल फल हो गया फिनिश्ड कंद मूल फल खाते natural sara, or fresh air, as it, or swachha jal, aur kya chahiye? Not much more. तो सारा उपलब्ध था इसी वन में. ये स्थान जो है उसी रामटेक, उसी प्रदेश का अरण्य का दंडकारण्य. तो लोग कंदमूल फल खाते जो सर्वत्र उपलब्ध रहता था, जो भी पानी बह रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग है ये ड्रिंकिंग नहीं, ऐसा अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी. हर जल क्या रहा करता था? पेय जल. तो वाह, लेकिन हाँ नहीं भाई, तो लौलेश्य लोभ, लोभ जब आ गया तो फिर कई सारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है. बढ़ाते हैं हम लोग, एक कृत्रिम जीवन प्रारंभ होता है, आर्टिफिशियल लाइफ, और उसकी पुष्टि के लिए सारा प्रयास, भागम भाग, और उसके लिए सारा झूठ मूठ बोलो, प्रजल्प करो. जनसंघर्ष, और ये सब होता है जनसंपर्क से, सत्संगति से दूसरी आइडियाज आ जाती है, लक्ष्य दूसरा बन जाता है. जो जीवन का लक्ष्य है भगवान, तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है. भक्त सनेवास, नरोत्तम दास ठाकुर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखे हैं. अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सनेवास रहने का परामर्श दिया है. मनुष्यों को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे. तो ये जो अत्याहार की बात है, इस संबंध में फिर व्यक्ति के स्तर पर हमने विचार किया, लेकिन जागतिक स्तर पर विचार करेंगे तो श्रील प्रभुपाद लिखे हैं ये जो अत्याहार, अतिया और चाहिए, और मोर अन्योर, जैसे भगवान भी कह रहे थे गोवर्धन पहाड़ को जो भगवान उठाए, या उठाने के पहले ही लीला हुई, सारे ब्रजवासी उनको भोजन खिला रहे थे, कंपटीशन हो रही थी, सारे पका भी रहे थे, भोग भी लग रहा था, भगवान ग्रहण भी कर रहे थे, और थाली खाली पड़ रही थी भगवान की. तो भगवान कहे अन्योर, और लाओ, ब्रिंग मोर. तो अन्योर नामक एक स्थान भी है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर, और ले आओ. तो हम भगवान की नकल कर रहे हैं. वहां तो ब्रजवासी भगवान को दे रहे थे, भगवान को खिला रहे थे, लेकिन जनसंपर्क में आने वाले लोग स्वयं के लिए चाहते हैं और लाओ. इसी के साथ ये पूंजीवाद या भोगवाद, कैपिटलिज्म, जिसका प्रारंभ पाश्चात्य देशों में हुआ या अमेरिका में, अमेरिका का जो इज्म है, वाद है, उसका नाम है कैपिटलिज्म, कैपिटल जुटाना, अधिक से अधिक धन संग्रह करना, ये जुटाना वो जुटाना, तो उसके पीछे ये अत्याहार, ये सिद्धांत है, अति आहार भोग। और भोग का ही परिणाम हम कई बार कहते हैं, भोग का परिणाम क्या होता है, क्या रोग, भोग से होते हैं रोग। तो ये भोगवाद सिखाया, अत्याहार सिखाया, अत्याहार के लीडर है वेस्टर्न कंट्रीज, उसमें भी अमेरिका लीडर, तो भोगी भोगवादी, भोगी से हो गए फिर रोगी हो गए, और सबसे अधिक रोगी कहां है, वहीं पर है अमेरिका में, सबसे अधिक रोगी कहां मिलेंगे आपको, अमेरिका में। स्टैटिस्टिक्स और सर्वे हुआ सारे संसार का, और बांग्लादेश में वैसे निरोगी अधिक मिले उनको, सिंपल लिविंग थोड़ा नेचुरल। मैं कल वहां जा रहा हूं देखने के लिए उनका लिविंग, तो ये सर्वे पता नहीं ये हेल्थ के संबंध में था कि कहां के लोग थोड़े शांत है, शांत प्रवृत्ति के, पीसफुल है, कंटेंटेड, शायद उसमें उनका नंबर होगा बांग्लादेश का। दो दो सर्वे, कई सर्वे तो होते ही रहते हैं, तो हुआ। तो वो जब असफल रहा उनका प्रयास कैपिटलिज्म, तो कुछ लोगों ने सोचा कि हम लोग दूसरा एक वाद इज्म प्रारंभ करते हैं, तो इन रिएक्शन कैपिटलिज्म की रिएक्शन क्या हुई, कम्युनिज्म, ऐसे प्रयोग करते रहते संसार में लोग, वात्याहार अत्याहार सब अपने लिए। तो फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज में, रशिया में उन्होंने कैपिटलिज्म के स्थान पर कम्युनिज्म, साम्यवाद, हमारे देश में सारी संपत्ति है ये, इसके मालिक कौन, ये देश मालिक होगा, ऐसा कोई देश देवता है या देश कोई है व्यक्ति, हाँ इस देश की सारी संपत्ति, सारे खेत है, इसका मालिक कोई नहीं होगा। अमेरिका में वो मालिक बनना चाह रहे थे, पूंजीवाद भोगवाद और कैपिटलिज्म, नाउ विल ट्राई समथिंग एल्स। तो 80 साल फिर रशिया में वो कैपिटल वो कम्युनिज्म चलता रहा। तो इसका अत्याहार से संबंध है दोनों का भी। तो श्रील प्रभुपाद कहे, श्रील प्रभुपाद जब रशिया गए, ओ आपका कौन सा इज्म, कैपिटलिज्म, ना ना कम्युनिज्म, तो श्रील प्रभुपाद कहे हम भी एक इज्म लेके आए हैं, वो कौन सा है, भागवत कम्युनिज्म, भागवत कम्युनिज्म। बात अमेरिका में तो हर व्यक्ति स्वयं मालिक बनना चाह रहा था संपत्ति का, फिर रशिया में प्रयास हुआ नहीं नहीं हम सारे मिलके या ये देश मालिक होगा, प्रभुपाद का ये दोनों भी गलत है, भक्ति विनश्यति। तो सही क्या है, भागवत कम्युनिज्म, मतलब ईशावाशम इदम सर्वम, सारे संसार के स्वामी कौन, भगवान है, इसलिए सारे संपत्ति को समर्पित करो भगवान को, और उसमें से उतनी संपत्ति ले लो जितने की आपको आवश्यकता है जीने के लिए, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो नहीं तो मर जाओगे। तो जीने के लिए खाओ, अल्पाहार स्वल्पाहार मित भूख, एक गुण वैष्णव का कहा मित भूख, कोई पैसे गिरे किसी के पैसे रास्ते में गिर गए आपके नहीं गिरे, कोई अपने जेब की ओर देख रहा है, मेरे तो नहीं गिरे, ये पहले की बात, आज की बात नहीं है। तो एक व्यक्ति ने देखा तो झट से उसने उठा लिया उस पैसे को, $100 नोट, और फिर बाजार गया, फिर उसने उसको उड़ा दिया। 5 मिनट में ऐसा ऐसा ऑर्डर दे दिया, ए ब्रिंग दिस ब्रिंग दैट। तो ये ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। फिर दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे समय हो सकता है, वह धन देखा उसने, उसने सही ये तो मेरा तो नहीं है, और किसी का है, मैं छूंगा नहीं, हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, सारा संसार तो मिथ्या है, उसने छुआ नहीं। तो ये भी सही नहीं है, ये दो पार्टी हो गए नहीं। एक पार्टी ने देखा किसी के पैसे गिरे हैं, कई पैसे है, कोई संपत्ति है, उसने सोचा और कोई मालिक है नहीं, अभी तो मैं ही मालिक, और कोई है नहीं, आई एम ओनली वन, उसने भोग लिया उसको। दूसरे व्यक्ति ने सोचा ए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तो माया है, मैं छूंगा तक नहीं, वो दौड़ा वहां से। इतने में तीसरा आ गया, हरे कृष्ण वाला आ गया, और उसने ये तो भगवान का है, ये संपत्ति किसकी है, भगवान की है। तो उसने फिर जन्माष्टमी के खर्चे में ढाल दिया, या नया मंदिर न्यू टेम्पल कंस्ट्रक्शन फंड में उसको डिपॉजिट कर दिया। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और तीसरा सही है। तो संपत्ति का मालिक भगवान है, ये समझना होगा, और उसका उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहिए। उसमें से जो हमारे लिए आवश्यक है उतना हम रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तेन त्यक्तेन भूंजिता मा ग्रदहा कश्य स्विद्धनम, हैंड्स ऑफ, तुम्हारा नहीं है कि उतना ही ले लो, अधिक नहीं लेना, अल्पाहार, उतना ही प्रयास करो, उतनी ही बात करो, सच कहो, और जो माया में लिप्त है उनसे दूर रहो। तो इस प्रकार का आदेश उपदेश इस श्लोक में दिया है। बात रह गई नियम आग्रह की, बात रह गई, और भी समझा तो जा सकता है, ये अत्याहार और ये प्रयास और ये प्रजल्प और जनसंग और लेकिन घड़ी रुकने के लिए तो तैयार नहीं है। तो नियम आग्रह एक तरह हम भौतिक संसार के भौतिक विज्ञान के नियम तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ दिस लॉ, केमिस्ट्री फिजिक्स के लॉज, कई सारे लॉज है जो लॉज वैसे भगवान ने बनाए हैं, लॉज हम लोग नहीं बनाते। सृष्टि सारी नियमों के अनुसार नियमबद्ध है, भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो उसको हम लोग ढूंढते हैं, पता लगवाते हैं कैसे बनी है, फिर उसका कुछ एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर हमारे प्रयास और अत्याहार चलता रहता है। तो वो एक सेट अप नियम हो गए, जैसे आहार में भी और भी मांस भक्षण के आहार भी हो सकते, प्रयास भी कई सारे भौतिक प्रयास, प्रजल भी होते हैं, जनसंघ, तो ये नहीं कि आहार खाओ नहीं, ऐसी बात नहीं है, आहार खाना ही नहीं है या प्रयास करना ही नहीं है, प्रयास के बिना तो कुछ उपलब्धि नहीं होनी है। ये सबक, ये लेसन नहीं सिखाया जा रहा कि आपको प्रयास क्या करो, अब छोड़ो, प्रयास तो जरूर करना होगा, लेकिन ये तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल, ये पहले निर्धारित करो और फिर उस प्राप्ति के लिए प्रयास खूब करो। लेकिन आपका लक्ष्य ही अगर गलत है, लक्ष्य ही इंद्रिय तृप्ति है, विषय भोग वासना है, अत्याहार है, कई भिन्न भिन्न प्रकार का, तो फिर श्रम एव ही केवलम, आपके सारे जो प्रयास है वो सारे विफल जाएंगे। श्रम एव ही केवलम, तो प्रयास तो करना होगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगः, तो जो सिंह है, सिंह होता है वन का राजा, वनराज, नर केसरी, उसको प्रयास करना पड़ता है। कहा है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, तो सिंह सोया हुआ है तो उसके मुख में पशु प्रवेश नहीं करता, है वनराज आपको भूख लगी होगी, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं आया हूं, मुख तो खोलिए, मैं प्रवेश करता हूं, फिर आप थोड़ा चबा लेना। तो राजा है, वन का राजा है, तो भी उसको भी उठ के दौड़ना पड़ता है, किसी पशु के पीछे शिकार, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, कभी हाथ लगता है कभी हाथ नहीं भी लगता है वो पशु। तो जहां तक प्रयास, प्रयास तो करना होगा, प्रयास के बिना तो कुछ प्राप्ति नहीं है, लेकिन प्रयास किसके लिए प्रयास करे और वो प्रयास कौन से हो, ये सब सीखने समझने की बातें हैं। तो प्रेम उपमार्थो महान, प्रेम ही लक्ष्य है, कृष्ण प्राप्ति लक्ष्य है, और उसके लिए सारे प्रयास होने चाहिए। कौन कौन से प्रयास, वो अभी अगले श्लोक में हम थोड़ा अध्ययन करने ही वाले हैं। उसके पहले ये नियम आग्रह जो है, एक तो नियम यह सांसारिक प्राकृतिक नियम की बात नहीं है, वो भी हो सकता है या इस नियम आग्रह में, किंतु कोई आध्यात्मिक या अलौकिक या धार्मिक जो नियम है उसमें भी या तो आग्रह रहना, ऐसे पालन करना, ऐसे पालन करना, अंधश्रद्धा के साथ, कुछ पता ही नहीं क्यों पालन किया जा रहा है वो नियमों का, वो आग्रह हुआ, नियम आग्रह, और नियम अग्रह, ग्रहण नहीं करना। आप अंतर देख रहे हो, आग्रह अग्रह, ग्रहण नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, तो बहुत कड़ा नियम, उसके पीछे का सिद्धांत या भाव को भी नहीं समझना, एक बात, और दूसरा इतना ढीला रहना, लूज नियमों के पालन के संबंध में, तो ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। संतुलन बताया, युक्त बैलेंस्ड होना चाहिए, युक्त आहार विहारश्च वाली बात है, आहार के संबंध में भगवान गीता में युक्त आहार कहे हैं, या युक्त विहार या युक्त प्रयास, तो नियम भी टू बी बैलेंस्ड, या समझ के उन नियमों का क्यों पालन कर रहे हैं। या एक परिस्थिति में जो फिट होता है नियम वो दूसरे परिस्थिति में नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर भी समझाए हैं इस वर्णाश्रम या जो कर्मकांड के कर्मकांडी जो है उनके लिए कोई विधि निषेध है, ये करना है या नहीं करना है। फिर ज्ञानियों के लिए ज्ञान कांड वाले, फिर वर्णाश्रम वाले, ब्रह्मचर्य के नियम, एक आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम में तो कड़े नियम है, गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ को भी क्या कहा है, गृहस्थ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी लेकिन दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचारी, तो वह कुछ लाइसेंस है, कुछ उन नियमों को थोड़ा शिथिल किया गया है। फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, या भक्ति की भी अलग अलग स्तर है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के सोपान है। तो हर स्थिति में कोई श्रद्धा के लेवल पर है, कोई साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो हर स्थिति में कुछ करनीय बातें हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स है, नियम है, इनको समझना होगा और उसके अनुसार कितना कितना आग्रह या कितना अग्रह, इसका बैलेंस भी बताए हैं। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु के समय, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, एक छोटी सी घटना, लीला भी कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जहां विश्राम किया करते थे, आप कभी गए होंगे, गंभीर 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 स्थान, गंभीर भी और बड़ा संकीर्ण छोटा, जब कोई लेट जाने से लगभग वो सारा स्थान भर जाता था, कवर हो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे अपने कक्ष में, तो वह गोविंद नामक उनके वैसे गुरु भाई ही थे लेकिन वो सेवक सेवक बने थे, पर्सनल सर्वेंट। तो वे आए, उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करनी थी, मसाज जिसको हम कहते हैं। तो वह आके देखते तो प्रभु जी तो द्वार पर ही लेटे हैं, या वो उसे कोई जगह ज्यादा तो है ही नहीं। तो दूसरी ओर थोड़ी जगह थी, उन्होंने सोचा कि मैं वहां पार करके जाऊंगा तो बैठ के वहां से फिर चरणों की सेवा को सिर को दबा सकता हूं। तो ऐसा सोच के वे गए, उन्होंने खूब सेवा की, सेवा समापन भी हुई, पूरी भी हो गई, वे वैसे ही बैठे रहे तब तक जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं उठे। उनको हल्की सी नींद आई थी तो प्रभु लेटे थे, तो जब जगे तो देखते ए, अभी तक तो यही बैठे हो। हां, कैसे जा सकता था, आप तो बीच में तो लेटे हो, तो आपको क्रॉस करना, पार करके जाना तो उचित नहीं था। तो महाप्रभु ने पूछा, लेकिन तुम आए कैसे, तुम आए भी तो पार करके, वैसे ही तुम पार करके जा सकते थे। तो उन्होंने सिद्धांत कहा या सदाचार की बात ये गोविंद ने कही। गोविंद ने कहा कि मैं जब पहली बार आया और पार करना था तो आपके सेवा करनी थी मुझे, पर मैं नहीं आता तो सेवा संभव नहीं थी, इसलिए मैं आ गया। कुछ उल्लंघन तो हो गया नियम का, कोई महात्मा बैठे हैं या उनके ऊपर से जाना, लोग क्यों स्पर्श भी हो जाए तो छूते हैं या माफी मांगते हैं, या ऊपर से जाना तो वो और भी अपराध। लेकिन मैं गया नहीं इसीलिए क्योंकि जाता कैसे, जाना था मुझे ताकि फिर मैं आराम कर सकता हूं या मैं भोजन कर सकता हूं। जाना तो था मेरे लिए, आ गया आपके लिए। जब अंदर आया तो आपकी सेवा के लिए आया, जब मुझे बाहर जाना था अपने खुद के सेवा या कुछ सुविधा के लिए जाना था तो मैं नहीं गया। ऐसा उन्होंने वो गोविंद ने जब उत्तर दिया तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। जय गोविंद प्रभु की। तो उन्होंने ये जो नियमाग्रह है इसका थोड़ा उस व्यवहार से सिखाया। कभी कभी पार तो नहीं करना है तो आग्रह करते या और कोई आग्रह करते तो पार नहीं करते पहली बार, लेकिन फिर सेवा नहीं होती। तो कई सारे नियम होते हैं, रूढ़िया होती है, हम लोग करते ही रहते हैं, उसका पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं, उससे हम आसक्त तो रहते हैं परिवार में या समाज में। ओ बाबा जी, नंद बाबा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कैसी पूजा? इंद्र पूजा। इंद्र पूजा भूल जाओ, मत करो। कृष्ण छोटे ही थे, उन्होंने ऐसा भाषण ठोका। नंद बाबा ने क्या किया? तो मैं क्या, फिर क्या कर सकते हैं? गोवर्धन पूजा करो, जो सामग्री लाई है आपने इसी सामग्री का उपयोग करो गोवर्धन पूजा के लिए। तो नियम तो बना था, लेकिन नियम तो था इंद्र पूजा का, तो ये इन्फीरियर है कृष्ण के पूजा के तुलना में। ये पूजा तो निम्न है, तो उसके स्थान पर दूसरा नियम गोवर्धन पूजा का नियम की स्थापना किए भगवान। अब हम पहले और कोई मंत्र खंडोबा मसोबा का जपते थे तो उनको हम नया दूसरा नियम बता सकते हैं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो उस नियम के स्थान पर, उस मंत्र के स्थान पर हरे कृष्ण महामंत्र की तो स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कोई हरे कृष्ण महामंत्र ही जप कर रहा है, उसको अगर कोई कहे खंडोबा का जप करो तो खंडोबा का जप करने वाले ने तो अपना जो नियम था उसको शिथिल बना दिया, हरे कृष्ण कर रहा है, दिस इज ओके। लेकिन अगर रिवर्स होता है तो वो नियम चलेगा नहीं, वह अपराध होगा। तो इस प्रकार समझना चाहिए ये जो छह बातें हैं। और क्योंकि अत्याहार, ये प्रयास से, ऐसे प्रजल से, ऐसे नियम के आग्रह से, जनसंग और लौल्य लोभ लोलुपता से षडभीर भक्ति विनश्यति, हमारे भक्ति का नाश हो सकता है। कुछ सेटबैक, कुछ हम भगवान के नाम में जो रुचि है कम हो सकती है। नाम तो मिला था, जब भी कर रहे थे रुचि भी आ रही थी, लेकिन अब वो नहीं रही पहले जैसी रुचि। ऐसा अगर हो रहा है, पहले तो बहुत दिल करता था भक्ति का, जप का, ये वो सत्संग का, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो फिर इस श्लोक की ओर मुड़ के हम देख सकते हैं, क्या हमसे अत्याहार तो नहीं हो रहा है? उसमें कई प्रकार है, आंखों का, नाक का, इसका उसका, प्रयास हमारे कैसे हैं, प्रज्वल तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहे हैं। प्रजल्पों में कई यहां तो लिखा, आज जो सूची हमने पढ़ी उसमें वैष्णव के संबंध में, साधु वैष्णव के संबंध में कोई कुछ अपराध करे, कुछ निंदा करे, टीका टिप्पणी करे, उसकी मदद तो की जा सकती है, कोई गलती उसकी है तो उसको सुधारा जा सकता है, समझाया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा है, लेकिन ऐसे ही फॉल्ट फाइंडिंग, ऐसे ही कुछ गलती देख रहे हैं और खूब उसकी निंदा इत्यादि हो रही है, तो वो प्रज्वल से हमारा नाम जप की जो रुचि है वो घट सकती है। ऐसे भगवान, ऐसा भगवान करते हैं, मतलब खुद को नहीं देते हैं ऐसे व्यक्ति को, मतलब उसकी भक्ति का विनाश। इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, इस ओर से वो साधक दौड़ रहा था, उस ओर से भगवान भी उसकी ओर से उसकी ओर दौड़ के आ रहे थे, अभी उसको उठाने वाले थे, लेकिन उसने क्या किया, कुछ हंगामा, क्या तो अच्छा शब्द नहीं होगा, तो ये सब अपराध किए, ये सब किया, अत्याहार किया, प्रयास या प्रजल्प किया, लौल्यश्य लोलुपता, तो क्या होगा फिर, षडभीर भक्ति नश्य। तो सोचना चाहिए, स्टॉप एंड थिंक एंड देन प्रोसीड, थोड़ा रुक के सोच के, थोड़ा आत्म परीक्षण करके, इंट्रोस्पेक्शन, हम टटोल के दिल को कि हमसे ऐसा कोई अपराध, ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही इस क्षेत्र में, और हो रही है तो फिर इसका स्वीकार करके सुधार करना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम घाटे में आएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ये थोड़ी सी चर्चा इस श्लोक की हुई, और अब और थोड़ा सा जो समय बचा है उसमें आगे का श्लोक, मुझे होमवर्क दिया है आनंद शेष ने, या दो श्लोक, तो ये नियम है, तो नियम आग्रह के नियम आग्रह जो भी है, तो वह ठीक है और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ी नकारात्मक कुछ चर्चा हो रही थी, अभी थोड़ी सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट यहां आ रहा है। ओके, तो इसको भी कही आप पीछे, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तना स संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति उत्साहान्निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। कोई कहिए श्लोक में और इसके पहले वाले श्लोक में कुछ साम्य दिखाई देता है आपको। कोई शब्द, कोई एक शब्द है षड्भी, षड्भीर भक्ति उसमें भी था और इसमें भी है षड्भीर भक्ति, तो ये तो साम्य हुआ। कोई भेद भी है इसमें, प्रसिद्धति है उसमें विनश्यति था। ये छह बातें करने से प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। वो बातें करो तो उसका परिणाम विनाश, विनश्यति। और ये छह बातें करो तो षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति, सिद्ध्यति, सिद्ध परफेक्शन पूर्णता सिद्धि। भक्ति में सिद्धि तो वो भी आइटम छह थे और इसमें भी छह आइटम रूप गोस्वामी प्रभुपाद दे रहे हैं। तो वे आइटम पहले कौन कौन से है उसको थोड़ा उसके नट बोल्ट खोल के देखते हैं। हाँ, संधि है इसमें, या संधि विच्छेद करने से फिर पता चलता है एक एक आइटम कौन सा है, नहीं तो लगता है कि छह तो आइटम है ही नहीं, तीन चार ही है। तो पहला आइटम है, पहला क्या है, उत्साह। उत्साह, उत्साह होगा तो भक्तिर प्रसिद्ध्यति। उत्साह। और दूसरा है निश्चय, आप देख रहे हो तो उत्साह, उत्साहात है वैसे और निश्चयात भी है, उसका त का न हुआ उत्साहान निश्चया और आगे वाले त का द हुआ है। तो उत्साह है, निश्चय है और धैर्य है, धैर्यात्म धैर्य से पंचमी विभक्ति हो गई। उत्साहात निश्चयात धैर्यात प्रवर्तनात् संगत्यागात्, ऐसे ये परिपंचमी चल रही है। तो तीन हो गए, उत्साह एक, निश्चय दूसरा, तीसरा धैर्य, तत्तत् कर्म ये चौथा है। तत्तत् कर्म प्रवर्तन भी कह सकते हैं, तत्तत् कर्म प्रवर्तन ये चौथा है। और संग त्यागात, संग त्याग, संग त्याग और सतो वृत्ते है। सत, सत मतलब संत, सत्य सत्य की जिनकी वृत्ति होती है, सत्य वचन सत्य जीवन जो जीते हैं, वे ऐसे वृत्ति वाले उनके कार्यकलाप हम अपनाएंगे। ये छठवां आइटम, षडभीर भक्ति प्रसिद्धति। ऐसा करने से क्या होगा? भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति का विकास होगा, भक्ति विकसित होगी। तो भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ऐसे कहा। तो हम सारे ब्रह्मांड भर में भ्रमण कर रहे थे, आपको पता है, आपको कोई फोटो, तो कोई फोटो दिखा दो, ऐसा कोई वीडियो है आप दिखा सकते हो, क्या प्रूफ है? anyway, प्रूफ तो भगवान का वचन ही है, शास्त्र का वचन है, में कहा है ब्रह्मांड भ्रमिते। फिर उसमें से कोई कोई भाग्यवान जीव को क्या होता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे कृष्ण और नारद जी की कृपा से ध्रुव महाराज को भक्ति के बीज प्राप्त हुए, भक्ति का बीज मिला। तो भक्ति का बीज मिलने पर, बीज का तो फल हो सकता है, बीज बीज कोई कोई खा ले, वो घाटे में आएगा। कोई बीज है तो उसको थोड़ा उसका पॉपकॉर्न बना दिया, खा लिया, लेकिन उसी बीज को बोएंगे तो क्या होगा? फिर कितने सारे कॉर्न मिल सकते हैं, एक बीज से कितने सारे फल मिल सकते हैं। और बीज फिर मिला लेकिन फिर बोया नहीं, या बो भी दिया तो वह ग्रीष्म ऋतु में उसको बोया तो भी उसका पॉपकॉर्न बन जाएगा, लाया बंतिल। तो बीज बोने के बाद क्या करना चाहिए? बीज कहाँ बोना चाहिए? बीज आप लेके गए रेगिस्तान गए, वहां आपने बो दिया बीज, कुछ मिलेगा फल? कहाँ जाना होगा? ऐसे क्षेत्र में जाओ, जहाँ उपजाऊ जमीन है, उसका तैयारी करो, पहले तैयार करो उस खेत को, वर्षा होने दो, बीज बो होने के उपरांत फिर अंकुरित होगा, फिर भी उसका ख्याल करना पड़ता है, उस बीज के साथ और भी कुछ उगाते हैं उनको निकालना पड़ता है। आप किसान, आप में से कोई किसान के बेटे हो कि नहीं? अरे अभी जग गए, अभी याद आ गया, आप जानते हो कैसे किसान फिर फल मिलता है। बहुत भाग दौड़, बहुत प्रयास करना पड़ता है, अभी उस बीज से पौधा लता, फिर उसमें फूल, फिर फल। तो इसको क्या हुआ? फिर ये भक्ति प्रसिद्धति। तो बीज से वो पौधा अंकुरित होना, कई हरी भरी पत्ते, रंग बिरंगे फूल उसमें, और अंत में फल, ये भक्ति प्रसिद्धति, ये भक्ति लता विकसित हुई। तो वहां विनाश की बात थी, यहां विकास की बात है। वहां क्या हो रहा था? विनाश, और यहां विकास। तो क्या करने से विनाश और क्या करने से विकास होगा भक्ति का ही। यह विकास के लिए क्या करना चाहिए ये बताया। उत्साहात, क्या होना चाहिए? उत्साह। उत्साह के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, प्रभुपाद यहां लिख रहे। व्यापार भी उत्साह चाहिए, इंथुजियाज्म चाहिए। उत्साह ही होना चाहिए। उत्साह के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्वयं प्रभुपाद बहुत सुंदर शब्दों में उत्साह को डिफाइन किए हैं, उसकी परिभाषा थोड़ी समझाए हैं। यस, एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह और इंथुजियाज्म। तो एंडेवर मतलब प्रयास, व्यक्ति का प्रयास और प्रयास का अमल हो रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, केवल ज्ञान ही नहीं, उसका विज्ञान उसको अमल कर रहा है। प्रयास एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि का उपयोग करते हुए इसके प्रयास चल रहे हैं, बुद्धि का उपयोग हो रहा है। तो ऐसे किए, बुद्धि का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए, समझ के, जान बूझ के, कन्विंस हो के, वो उतर रहा है मैदान में, कुछ सेवा को प्रारंभ कर रहा है। तो वो हो गया, वो उत्साह हुआ, उत्साह हो। वैसे भगवान की सेवा एक उत्सव होता है। भगवान की सेवा क्या होती है? उत्सव होता है, उत्सव। पदम पदम, तो प्रतिपदम पूर्णामृत रसास्वादनम, या जो उद्धव उद्धव, जहां उद्धव वहां उत्सव के कहा है शास्त्र में, जहां उद्धव वहां उत्सव। तो उत्सव में उत्साह आ जाता है। उत्सव होने से क्या होता है? उत्साह आ जाता है। हाँ चलो वो मेले में जाएंगे, उत्सव होगा, फेस्टिवल कहते ही सब लोग दौड़ पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं, उत्साहित होते हैं। तो उत्सव और उत्साह का संबंध है, और भक्ति के कार्य वैसे उत्सव है। उत्सव भक्ति का हर कार्य क्या है? उत्सव। तो भक्ति के कार्य के लिए उत्साहित होना चाहिए। हतोत्साही नहीं। भक्ति करने से मिलन होता है। किसके साथ मिलन होता है? भगवान के साथ मिलन होता है, मिलन होता है। तो मिलन के लिए जीव फिर उत्कंठित होता है, और फिर उत्साहित भी होता है। फिर या उसने पहले की हुई जो भक्ति है, और उस समय जो उसने अनुभव किया कृष्ण के निकट होने का, कृष्ण के पास होने का, कृष्ण के सानिध्य का कुछ आभास हुआ मानो, अनुभव हुआ, फिर वही अनुभव उसको और उत्साहित बनाता है और पुनः उस सेवा की ओर दौड़ता है या उत्साह के साथ उसको निभाता है। सो उत्साहित होना चाहिए। तो किसी ने कहा अगर हम उत्साही नहीं है तो क्या करें। हमारे एक स्वामी जी थे, अब ये नहीं रहे, विष्णु जान, बड़े ही उत्साही। उनके संपर्क में जो भी आता वो उत्साही होता। तो कोई भक्त कहता कि ओए नो आई हैव नो एंथुसियाज्म, आई लॉस्ट माय एंथुसियाज्म, व्हाट शुड आई डू। तो कभी कभी भक्त कहते देन यू गो टू विष्णुजन स्वामी, यू गो टू हिम, उनके पास जाओ। तुम्हें उत्साह नहीं अभी तो उनके पास जाओ, उनके संपर्क में सानिध्य में तुम आओगे तो तुम भी उत्साहित हो जाओगे। तो उत्साह एक जैसे बीमारी फैलती है ना, एक व्यक्ति से सांसर्गिक रोग कहते हैं, सांसर्गिक रोग संसर्ग से मेरा रोग दूसरे को मेरे संपर्क में आने से उसके पास पहुंच जाएगा। उसी प्रकार ये इंथुजियाज्म जो है, ये उत्साह जो है, ये भी ऐसा ही आध्यात्मिक भाव या रोग या है। तो उत्साही भक्तों के संग में आने से हम भी उत्साही हो जाते। तो हमें ऐसे संत या संत समागम सही उपलब्ध है वहां जाना चाहिए, उतना तो प्रयास कर सकते हैं हम। अब वहां पहुंच गए तो फिर बाकी काम तो आसान, फिर आपको उत्साह प्राप्त होगा। सो उत्साह, निश्चयात्, निश्चय भी चाहिए। उत्साह है तो उत्साह के साथ और क्या चाहिए, निश्चय चाहिए, निश्चय, डिटर्मिनेशन या कॉन्फिडेंस भी प्रभुपाद करें, आत्मविश्वास होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए। नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बीच में से ही पीछे मुड़ होगा। तो कैसे हम आगे बढ़ते रहे, तो डिटर्मिनेशन। तो जैसे श्रील प्रभुपाद का उत्साह के संबंध में बुद्धि का उपयोग के साथ वो प्रयास, और वैसे बुद्धि के साथ ये भी समझ ले हम कि भगवान, जो भी भगवान की शरण में आते हैं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, इसको याद रखिए, क्या है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण क्या करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। तो वो विश्वास ही भगवान के उस चरित्र में विश्वास, भगवान कैसे है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, हमारा अवश्य रक्षा करने वाले कृष्ण है, जब और कोई नहीं है तो कौन है, कृष्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। तो इस समझ के साथ फिर हम निश्चय को दृढ़ निश्चय बना सकते हैं। दृढ़ निश्चय कैसा निश्चय? दृढ़ निश्चय, दृढ़ दृढ़ हो जाएगा। श्रीमद् प्रभुपाद यह तो नहीं लेकिन अन्य स्थानों पर लिखे हैं, कहते महात्मा गांधी को स्वातंत्र्य संग्राम में यश मिला क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी थे और उनको यह दृढ़ निश्चय प्राप्त कहां से हुआ? श्रील प्रभुपाद कहते हैं ही वॉज अ सेलिबेट, उनकी सेलिबसी, उनका जो ब्रह्मचर्य का पालन, का ब्रह्मचर्य का पालन जो उन्होंने किया उससे वह दृढ़ निश्चयी थे। बीच में बैठने वाले या बीच से लौटने वाले, पीछे मुड़ करने वाले, दृढ़ निश्चय उनमें उनके ब्रह्मचर्य का पालन से आया। तो थे गृहस्थ तो भी ब्रह्मचारी थे या गृहस्थ ब्रह्मचारी थे, तो ये ब्रह्मचर्य या पतिव्रता ब्रह्मचर्य, इंद्रिय जनन इंद्रिय संयम, इससे दृढ़ निश्चय आता है, ऐसा प्रभुपाद संबंध जोड़ते हैं। कुछ कार्य अपनाया तो निश्चय के साथ आगे तभी बढ़ा जा सकता है, ये ब्रह्मचर्य के पालन से। उत्साह निश्चया फिर धैर्य भी चाहिए, धैर्य पेशेंस चाहिए, ये सभी चाहिए, तभी तो क्या होगा षडवीर भक्ति प्रसिद्धति होगा। उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए और धैर्य भी चाहिए। धीरज चाहिए, तो हुआ पहले श्लोक में भी धीर पुरुष का वर्णन आया है, अभी हम पढ़ रहे थे। एतान वेगान यो विषहेत धीरः, सोबर पर्सन। धीर कौन है? एतान वेगान यो विषहेत धीरः, जो वो जो वेग है, काम का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर उपस्थ वेग जो है उसको ऐसे ढकेल देते हैं, जो जिसमें सामर्थ्य है उसे विचलित नहीं होता, काम या जिह्वा वेग या मन वेग, क्रोध वेग से जो विचलित नहीं होता वो है धीर पुरुष। तो ये वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग, उपस्थ वेगम वही है उपस्थ, जनन इंद्रिया भी उसका वेग से प्रभावित नहीं होना। ऐसे करने से व्यक्ति क्या बनता है? धीर बनता है, धीर गंभीर स्टेडी, धीर स्थिर भी। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धैर्य देखो, ऐसी स्थिति है, क्या हो रहा है, शरीर समाप्त भी हो रहा है तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर का समय आ गया, लेकिन उस स्थिति में भी क्या है, वो धीर है, अनडिस्टर्ब्ड, ये धैर्य है, धैर्य, चारा पीसफुल है, शांत है, तो धैर्य का प्रदर्शन, तो फिर उसमें कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन सारे आंधी तूफान के मध्य में ऐसा हो रहा है संसार में डामाडोल हमारे सभी दिशाओं में, उस स्थिति में वैसे धीर ये जो गुण है उसका उपयोग है, तो ये वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम विषहेत धीरहा, एतान वेगान, ये जो वेग है इनसे जो विचलित नहीं होता, तो ये सारी साधना है, ये सारा आध्यात्मिक जीवन है, उसी से साधक साध्य को यह सिद्धि को प्राप्त करता है, भक्ति प्रसिद्ध्यति, तो ये धैर्य उसका धीर जो है, मतलब इम्पेशन नहीं होता, उतावला नहीं होता, धीर होता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, आएंगे, मिलेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जहां तक धीर का उदाहरण है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब दुल्ला दुल्हन विवाह हो गया तो वह कहा है बच्चा कहा है, बड़े सब बहुत फटाफट, तो उसको क्या करना होगा, जो भी है विधि है, और फिर पेशेंस भी चाहिए, धीरज चाहिए, उसको ये भी ज्ञान चाहिए, 10 महीने 10 दिन रहेगा, क्यों नहीं आ रहा है, वेर इज ही, वाई इज ही लेट, क्यों देरी कर रहा है, तो प्रकृति है, नियम है, प्रकृति के नियम है, उनको समझना होगा, तो समय के दौरान धैर्य धरने से इसका फल होगा, ऐसा विश्वास भी हो, जी समझ हो, तो विवाह के उपरांत उस पति पत्नी को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होती है, अपत्य की करते हैं वे, वैसे ही भक्त भी अपने जीवन में धैर्य का प्रदर्शन करता है, सो उत्साह है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उसका धैर्य, ये तो तीन हो गए, और क्या बच गए, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, तो हुआ सारी साधना करनी होगी, तत् तत् कर्म, ट्वेंटी फोर आवर्स तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, 24 घंटे का कार्यक्रम है, दिन में कितना समय है, 24 घंटे, भगवान को कितना समय, 24 घंटे, भगवान का अधिकार है आपके 24 घंटों के ऊपर, हुआ भगवान को प्राधान्य देना चाहिए, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् के लिए, भगवान के प्राप्ति के कार्यकलाप, फिर हमारे खाने पीने का क्या होगा, कहोगे तो को किस फॉर्मूला बड़ा सीधे बन जाओ, सरल जीवन बना दो, तो बहुत कम प्रयास में फिर आपका आपका हो जाएगा शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, और पेट भरेगा। और भक्ति करने से पेट थोड़े ही भरता है, कुछ लोग कहते क्या भक्ति करने से पेट थोड़े ही भरता है, तो और कुछ करने से पेट भरता है? पेट कहीं भरता है? पेट कहीं भरता है? किसी का पेट भरा है? कल भरा था, आज तो पेट तो 50 साल से पेट तो भर ही रहे हैं, पेट भरता है? पेट तो भरता ही नहीं है। लेकिन भक्ति करने से पेट भरता है। वैसे आत्मा यही आत्मा सु प्रसीदति, आत्मा आत्मा का जो पेट है भरता है भक्ति करने से। तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, तो समय मिलेगा तो भक्ति करेंगे, ऐसा हम लोग सिद्धांत बनाते हैं। समय मिलेगा तो वो भी देखा जाएगा, समय मिलेगा तो करेंगे नहीं, समय मिलेगा तो देखा जाएगा, किसी से पूछेंगे फिर देखा जाएगा, हाथ दिखाएंगे। हमारे राधा गोविंद महाराज कहा करते हैं कि समय मिलेगा तो पहले तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् करते रहे, समय मिलेगा तो दुनिया का कोई काम देख लेंगे, देखा जाएगा। आप समझ रहे हो, हम पहले भक्ति करेंगे जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, और समय मिलेगा तो देखा जाएगा, और कुछ करना है नहीं करना देखा जाएगा। क्योंकि हम जिस युग के जीव है, जिस माहौल में अब फंसे हैं, इस प्रकार का वातावरण प्रचार प्रसार है, हाई लिविंग वाला, सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग, जीवन शैली उच्च हो विचार, सिंपल हो विचार, क्या हो ही नहीं उसे और भी अच्छा है, सोचो नहीं पहले करो बाद में सोचो, जस्ट डू इट, तो हुआ तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दश्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति, नवधा या नवविधा भक्ति, ये सब तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् की बातें हैं। इसको करते ही रहना चाहिए, अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म है, स्वयं स्वयं कर्मण्यभिरतः, अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करे, कार्य करे, भक्ति के कार्य करे। अर्जुन ने भी कार्य किया, भक्ति का कार्य किया, भक्ति अलग और कार्य अलग ऐसा नहीं था। अर्जुन ने जो युद्ध किया वही भक्ति थी, तो ये भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने युद्ध किया। तो ऐसा कुछ करो, कंबाइन करो भक्ति और कार्य। नामाश्रय करी जतने तुम्ही तक अपन काजे, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और संगत्यागात संग त्यागात, क्या करो संग का त्याग करो कहा। वहां क्या था उस श्लोक में, क्या था जनसंगश्य, जनसंग करेंगे तो क्या होगा भक्ति विनश्यति। जनसंग जनता का सम, जो कामी विषयी लोभी क्रोधी क्या क्या जो जनता है उनका संग करो तो वैसे तुम भी बनो क्रोधी, तुम भी बनो कामी और तुम भी वैसे ही बनोगे उनके संग से। तो वहां कहा था विनश्यति, लेकिन यहां कहा संग त्यागा, ऐसा संग त्यागो तो क्या होगा भक्ति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागा तो ये तो आप स्वयं सोचते हो कैसे प्रैक्टिकल है, हाउ टू कैसे क्या कैसे करें ये संग त्यागा। हम जैसे फंसे हुए हैं, लिप्त है और किसी मोहल्ले के बीच में है और कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या है, हाउ टू डू ये। तो प्रैक्टिकली हम संग त्यागा, संग को त्यागने के लिए कहे हैं। संग भी दो प्रकार के, या असत संग त्यागात, असत संग त्यागात और सत्संग, साधु संग, साधु संग सर्व सिद्धि का लव मात्र, सर्वशास्त्र का लव मात्र सिद्ध, सर्व लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो वह साधु संगति से तो भक्तों की संगति से लाइक माइंडेड हमारे विचार के, जिन्होंने एक ही भगवान ही लक्ष्य बनाया है, ऐसे विचार के जो लोग हैं उनके संगति में अपना समय बिताओ, अपना बैठना उठना उनके संगति में करो। तो संग के बिना तो रहना कठिन है। वैसे भी मनुष्य को कहा सोशल एनिमल, मनुष्य कैसा है, कुछ पशु गुफा में रहते हो कहा उनका कौन कहा रहता है, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं इकट्ठे रह जाते हैं, ग्राम बनाते, ग्राम मतलब एकत्रित होना, इकट्ठे रहते, सोशल एनिमल। तो एक समय तो बहुत आसान था, सभी गांव के गांव, सारा राज्य का राज राम राज हुआ करता था, फिर आना जाना ऐसे कोई समस्या नहीं रहा करती थी। असत संग त्यागा, जो भी जिसको भी मिलोगे सभी सत्संगी, सभी साधु संत महात्मा ब्राह्मण ऐसे विशाल दृष्टि के और उच्च विचार के, सादा जिनका जीवन, ऐसे ही लोग हर व्यक्ति 100% पॉपुलेशन या 90% कहो, मेजॉरिटी कहो, ऐसे लोग हुआ करते थे। तो उन्हीं के मध्य में रहो, कहीं आना जाना तो नहीं है, उन्हीं के साथ डील करो व्यवहार करो। लेकिन अब समस्या हो गई, कली का जैसे प्रचार जंजाल फैला है, लेकिन इससे निकलना है तो वह सत्संग चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ताकि लोगों को इस पृथ्वी के जो लोग हैं उनको सत्संग प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ये संस्था की स्थापना हुई है। और फिर आपको केवल मंदिर में आके सत्संग प्राप्त करना नहीं है, कभी संत तो आपके घर में आ सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि यह एज ए हिंट, आपको जिनके जिनके साथ संग करना ही पड़ता है, उसके बिना तो जीना कैसे, प्रैक्टिकली जीना संभव है, तो आप वो सारे व्यक्तियों को सत्संगी बना दो। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करो। पति पत्नी से, पत्नी पति से शुरुआत कर सकते हैं। वे अगर नहीं है तो उनको लाओ, परिवार बच्चे हैं और जो है, फिर पड़ोसी है। चैन से शांति से जीना है तो सारे पड़ोसियों को भी, आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है, लाइक दैट आपको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। उन्हीं के साथ डील करना ही तो, उनको चैतन्य महाप्रभु को लेना था, मंत्र लेना था, केशव भारती से संन्यास मंत्र लेना था। लेकिन ये केशव भारती तो मायावादी सन्यासी थे, तो मायावादी से कैसे मंत्र ले ले। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बड़े युक्ति पूर्वक उनके कान में मंत्र फूका। उनसे मंत्र लेने के पहले उनको मंत्र दिया, उनको वैष्णव बनाया और फिर उनसे उन्होंने मंत्र ले लिया, दीक्षा का मंत्र, सन्यास दीक्षा। तो जिनके संपर्क में आना जाना, बैठना उठना, व्यवहार जो, तो वहां अगर हम कृष्ण लाते हैं प्रसाद, कोई कृष्ण कथा चर्चा, वही विचार विमर्श, कोई जो भी प्लानिंग टेंपल बनाना है राधा गोविंद के लिए, राधा गोपीनाथ के लिए नागपुर में, और मंदिर बना के ही रहेंगे, ये क्या अचानक क्या हो रहा है? आप सोच रहे हैं कि अभी समझ गए क्यों लाया हमें यहां, कुछ प्रतिज्ञा होगी। वाह। फिर सत सत्संगात, संग त्यागात, संग त्यागात, संग त्यागात, संग मतलब असत्संग त्यागात, वैष्णवाचार। तो ये संग जो बिजनेस है ये बड़ा, क्योंकि संग अगर भौतिक संग मिलता है हमको तो ऐसे संग से संगा संजायते कामः, भगवान स्पष्ट कहे। असत्संग के संगति में काम वासना उत्पन्न होती, कामना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जिस कामना से सारे अशांत, सारा संसार अशांत है कामना के कारण। लेकिन कामना उत्पन्न कैसी होती है, संगात संजायते, संगात संजायते मतलब उत्पन्न होती है, संगात संजायते कामः, काम वासना उत्पन्न होती है। और काम वासना जब मन में जगती है तो फिर उस कामना से युक्त जो मन होता है बहुत प्रयास करता है अपने कामना के पूर्ति के लिए। ऐसे सब होता है, हमको पता नहीं क्या क्या होता क्या है, हम ऐसे ही भ्रमित मायाबद्ध जीव, पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है। तो क्या क्या है, कौन कौन है, कौन कौन से शक्तियां हम पर कार्य कर रही है, प्रभावित कर रही है, इसको समझना होगा। इसी को प्रभुपाद कहे विथ इंटेलिजेंस एंडेवर, हो कैसा, बुद्धि का उपयोग करते हुए। ऐसा ही एंडेवर नहीं, ऐसा ही प्रयास नहीं, समझो। तो ये संग, संगा संजायते कामा, संग से अगर असत संग है तो काम उत्पन्न होगा। तो ये संग कहां से आता है, तो वह उसी को भगवान कहे ध्यायतो विषयान पुंसाम। ध्यायतो ध्यान करने से, किसका ध्यान करने से, विषयों का ध्यान करने से, विषयों का ध्यान करने से क्या होता है, ये संग, हम संग मतलब आसक्ति भी है, संग मतलब आसक्त होना, आसक्त होना, तो हम लोग आसक्त होते हैं विषयों का ध्यान करने से, उन विषयों में आसक्त होते हैं। तो सारे संसार भर में विषय, विषय से भरा है, ये विषय से भरा हुआ संसार है, तो सर्वत्र विषय ही विषय है, उसकी खूब चर्चा है, प्रजल्प है, उसको पहुंचाने का आपके पास, आपके सामने उसको घुमाने का, उसका खेल, नंगा नाच दिखाने का व्यवस्था है, ताकि अब उसको देख देख के क्या करोगे, आसक्त होंगे। वो टेलीविजन नामक वो व्यवस्था है, दूरदर्शन, लोग और विषय बन रहे हैं, तो विषय की सारी जो आइडियाज वासना है वो कहां से मिल रही है, टीवी से सारी आइडियाज, यू गेट ऑल द आइडियाज, घर बैठे बैठे सारे विषय आपके सामने, उसका प्रदर्शन है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, लेकिन हमने सोचा हम तो कुछ कम नहीं है अमेरिका से, हम भी आगे बढ़ेंगे, उनके पास कलर टेलीविजन, हमने भी क्या किया, कलर टेलीविजन, कलर लाया, मानो समक्ष है। कभी कभी टेलीविजन से बाहर भी कोई हाथ निकाल के और दिखाते थे, ये लाइव है, उसकी बैट है, कभी कभी बाहर आ जाती है, वो क्रिकेट की, गावस्कर तो अंदर है, उसकी बैट बाहर आ गई, मानो थ्री डायमेंशनल, ऐसा कुछ दिमाग लड़ा के, सारी टेक्नोलॉजी, सारा साइंस, सारा का क्या करके, ऐसा व्यवस्था, लाइट साउंड का सारा इफेक्ट, और मनुष्य की जो कमजोरी है, द वीकनेस, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। कौन किसको चिंता है आगे क्या होने वाला है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो बिक्री हो गई, वो माला माल हो गए, और फिर आप वो खरीद, शॉपिंग के लिए फिर आपको खूब प्रयास करो, और फिर खरीद लो, और उसको चख लो, चख दे, क्या चख दे, चख दे, चख दे, तो या नाच लो, तो कभी कभी ऐसा कुछ सुनने में आता है, चख दो, उनको ज्यादा कोई समझ में नहीं आता आगे पीछे क्या है, लेकिन ऐसा कोई शब्द पता चलता है, चख दो ये वो, तो हुआ तो ध्याय, तो उसका ध्यान करने से, तो विषयों का देख लिया, विषयों को सुन लिया, विषयों को सूंघ लिया, वो मन में बैठता है, उससे हम आसक्त होते, फिर वो वस्तु सामने नहीं भी है तो जो हमने देखा था उसको मन में लाने से और आसक्त हो जाता है, कॉन्टेम्पलेशन या मनन कहते हैं। ये भगवान की जो भक्ति है, कथा है, केवल श्रवण से तो मन में बैठती ही है, लेकिन श्रवण के बाद उस कथा का अगर मनन हो जाए, उस कथा का चिंतन हो जाए, उस कथा को पुनः मन में लाके उसको देखा जाए इधर से उधर से, तो वो लीला फिर हमारी संपत्ति बन जाती है, वो मन में और बैठ जाती है, उससे हम और आसक्त होते हैं। तो पहले जो सुना रेडियो से, देखा टेलीविजन से, एडवर्टीजमेंट या कोई प्रत्यक्ष देखा, वो अजामिल में देखा, अजामिल ने देखा, कोई वेशा किसी नीच पुरुष के साथ उनका संग चल रहा है, उस बेचारे ने देखा, दुर्दैवी की बात, जब देखा तो उसने, उसको आइडिया, मैं भी ऐसा ही कुछ कर सकता हूं, व्हाई नॉट, उसको आइडिया आ गए, ऐसी शुरुआत हो गई अजामिल प्रसंग की। तो फिर उसी सारी युक्ति, उसकी योजना, सारा प्रयास अब शुरू हुआ, और उसी वेशा को उसने अपने घर में लाया, और वो उसकी पत्नी थी, पतिव्रता, सुंदर युवती थी उसको हकाल दिया और उस वेश्या को अंदर कर लिया। और फिर क्या क्या उसके उसकी प्रसन्नता के लिए सारे प्रयास गलत सलत, और उसका हो गया पतन हो गया। 88 ईयर्स का था, 88 वर्ष का था, उसने 10वां बच्चा उत्पन्न किया। 88 ईयर्स, 90 में 2 साल कम, पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा इतना आसक्त हो गया, तो केवल कुछ देख लिया तो उसे आइडिया, आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। फिर देख लिया, फिर देखा जो था उसको स्मरण कर लिया, चिंतन मनन कर लिया, और आसक्त होता आ गया। तो हुआ बस उस माया के स्थान पर कृष्ण के संबंधित का सारे टॉपिक्स है, उसका अगर ध्यान करे, उसमें रूप है, भगवान का रूप है। हमारे पास 5 इंद्रिय है, तो भगवान के पास 5 विषय है। आंख के लिए भगवान के पास कुछ विषय है कि नहीं? आंखों के लिए कुछ है? भगवान का रूप है। कान के लिए भगवान का नाम है, भगवान कथा है। जिह्वा के लिए उनका प्रसाद है। त्वचा के लिए उनकी सेवा है, उनके चरणों को स्पर्श कर सकते हैं, या मंदिर मार्जना दो, या मृदंग बजाओ, करताल, या जो भी आप रोटी बेल रही हो, जिसको भगवान की सेवा में वो भोग लगेगा, तो रोटी बेलते हुए आपका जो टच सेंसेशन है वो भगवान की सेवा में। आप माला फेर रहे हो, टच हो रहा है, तुलसी के साथ स्पर्श हो रहा है, भगवान की प्रिय तुलसी आपके हाथ में, उसको स्पर्श कर रहे हो। इस प्रकार आपका स्पर्श इंद्रिय, आपका ये आंख दृष्टि, आपका कान, आपका नाक, आपकी त्वचा, आपका सब इंद्रिय भगवान की सेवा। और ये आइडियाज कहां से आती है? सत्संग से आती है। ये आइडियाज सत्संग से आती है। तो हुआ सत्संगात संग त्यागात, इसीलिए असत्संग को त्याग करके सत्संग को अपनाना चाहिए। और सतो व्रते, वो भी आ गई, हो ही गई चर्चा थोड़ी, जो संत महात्मा है, भक्त मंडली है, उनकी जो वृत्ति है, उनका जो स्वभाव है, उनके कार्यकलाप है, उनका हम अनुसरण करें। और तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। हम भी 71 में वहां गए, हरे कृष्ण उत्सव में, क्रॉस मैदान पर। तो वहां का जो भी हम देखे सुने, स्पेशली वहां का जो कीर्तन होता था, और कीर्तन में वहां के देश विदेश के भक्त अधिकतर विदेश के ही थे उन दिनों में, तो जो नृत्य कर रहे थे भक्त पूरे प्रयास के साथ, विथ ऑल देयर हार्ट्स, दिल से और उत्साह और शक्ति के साथ जो कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, वो बात हमारे मन में बसी। फिर जब हम घर आए, वो उत्सव भी समाप्त हुआ, तो हमारा मन करने लगा, हम भी चलो, हम भी नाचते वैसे ही। लेकिन सभी के साथ सामने तो नहीं नाच सकते थे, इसीलिए हम सारे जो कक्ष था, कमरा, और उसके दरवाजे, खिड़कियां, कर्टन सारे बंद कर देते, और हम फिर मैं अकेला ही वैसे ही नाचता, जैसे वो भक्त नाचते थे कीर्तन में। तो सतो व्रते, तो सत्संगति में जो सीखा, जिससे प्रभावित हुए, तो फिर हमारे जीवन में क्रांति होगी, कुछ मोड़ आएगी, कुछ टर्निंग पॉइंट आ सकता है, जरूर आएगा। तो कहा सत् संग त्यागा सतो वृत्ते है, और ऐसे करने से फिर षडवीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, हमारी भक्ति दृढ़ होगी या सिद्धि प्राप्ति होगी। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इन तात्पर्यों को आप जरूर पढ़िएगा, भावार्थ जो प्रभु श्री प्रभुपाद लिखे हैं, और आचार्यों ने भी इस पर, इस विषय पर कमेंट्स लिखे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भक्त्यालोक नामक अपने ग्रंथ में इस पर और प्रकाश डाले हैं, तो जैसे हमने कहा ये नींव है, फाउंडेशन है हमारे भक्ति जीवन का, ये जो श्लोक है उपदेशामृत के श्लोक, और ये उपदेश कोई प्रश्न है? आप कहोगे प्रसाद कब है, I'm sure there's a common question। उससे अभी कोई उत्तर है आपके पास? कृष्ण करो ना, प्रभु के पास उत्तर है उसका, तैयार है। ओके, तो भगवान भी आपके मध्य में रुकावट नहीं बन रहे, उन्होंने अपना भोजन कर लिया है, बस मैं ही आपके और भोजन के बीच में हूं अब। और कुछ कहना? जब सभी करते हैं, सभी जब करो, यहां से तो शुरुआत करो, उसी में उसी के संबंधित है ये आज के चर्चा।